أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بہترین نماز کیسے پڑھیں کے سلسلے کا درس نمبر 30. پچھلی بار اس بات کی اہمیت بیان ہوئی تھی کہ انسان اپنی نمازوں کو قضا نہ کرے، اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر وہ متوجہ ہو جائے کہ جو نمازیں مجھ سے قضا ہو گئی ہیں وہ میں پڑھ لوں اور پڑھنا شروع کر دے، تو پھر اسے پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اپنی نمازوں کو کچھ وقت لگا کر وضو اور نماز وغیرہ کے مسائل کو صحیح طریقے سے حاصل کرے اور پھر قضا نمازیں پڑھیں. کیونکہ اکثر ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے اپنی 10-10، 20-20 سال کی نمازیں پڑھ ڈالیں اور کوئی ایسی غلطی اس میں نکل آئی کہ وہ پڑھی گئی نمازیں بھی باطل ہو گئی. تو اس لحاظ سے بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو اس میں قضا نماز کو بھی اس طرح سے بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، مسائل وغیرہ کو جان کر کہ وہ بھی باطل نہ ہونے پائیں. تو قضا نمازوں کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گے. لیکن نمازوں کو قضا کرنا فقط اخروی نقصانات نہیں رکھتا ہے، اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں. کتنی تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جس میں سے اہم ترین دنیاوی پریشانی رزق کا تنگ ہو جانا بھی ہے. لوگ کتنا زیادہ آج کل پریشان ہیں، جتنا بھی کما لیں پورا نہیں پڑتا ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ نمازوں کا عمومی طور پر قضا کرنا ہے. اور خاص طور پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ دیندار حضرات کی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، خاص طور پر نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، اور بڑے آرام سے قضا کر دیتے ہیں. پھر عذر خواہی وغیرہ ہوتی ہے، پیش کرتے ہیں عذر کے بھائی آج تو میری آنکھیں نہیں کھولی، کل دیر سے سویا، بالکل ایک نارمل طریقے سے، اس طرح کوئی عام سی بات ہو گئی. اچھا، علماء سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آخر دیندار افراد کی نماز فجر خاص طور پر کیوں قضا ہوتی ہے؟ آیت اللہ حسین مظاہری نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے. کہا کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہم عمومی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں ان کے بھی نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز فجر قضا ہوتی. معصوم ظاہر ہے کہ ہم نہیں ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہ کے دنیاوی اثرات بھی ہوتے ہیں، اخروی بھی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اثر اس کا یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے. اور دوسرا سبب ایک یہ بھی بتایا ہے کہ دینداروں کی کیوں قضا ہوتی ہے نماز. تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ مومن کے رفع غرور کے لیے، جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اس کے غرور کو، اس کی دینداری کا جو غرور ہے، پروردگار اپنے الطاف خفیہ کے طور پر اس میں مبتلا کر دے. الطاف خفیہ یعنی کچھ تو پروردگار کی عنایات سب کے سامنے ہوتی ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ پروردگار کی طرف سے نعمت ملی. کچھ مخفی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص بیمار پڑے، لوگ سمجھ رہے ہوں کہ مصیبت میں اس پر رحمت خدا کی بارش ہو رہی، یہ الطاف خفیہ. کسی کے گھر موت ہو جائے، سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جو دفن کرنے جا رہے ہیں ان کے بھی معاف ہو رہے ہیں، اور ان کی اور یہ جو مرنے والا ہے اس کے لیے بھی کتنے ثواب اور اس مغفرت کا باعث بن رہی ہیں چیزیں. یہ الطاف خفیہ ہے. تو ایک مومن اپنی دینداری کے اوپر غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہا یہ الطاف خفیہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ فرماتے تھے اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسے خصوصیت سے استغفار کرنا چاہیے. اچھا، اب ایک روایت ہے، اس کا میرے پاس کوئی حوالہ اور سند نہیں ہے، اس کو میں چیک نہیں کر سکا، تو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی حوالہ اور سند پوچھے تو وہ ڈھونڈنی پڑے گی، ابھی تک میں نے اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن ہے بڑی मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर भी इसको देखा है, लेकिन अभी इसका कोई मुस्तनद हवाला नहीं देखा। किसी के पास हो तो पेश कर दे। वो कि एक शख्स हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कि खिदमत अकदस में आता और कहता है कि मौला मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इमाम ने फरमाया कि खुदा माफ करेगा। कहा कि नहीं मौला, बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। कहा अगर तुम्हारे गुनाह पहाड़ के बराबर भी है तब भी खुदा माफ कर देगा। कहा कि मौला बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है, तो फिर इमाम ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ कि कौन सा गुनाह हुआ, और उसने अपना वो गुनाह बताया। इमाम ने कहा कि ये इतना बड़ा गुनाह भी माफ हो सकता है, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं तूने नमाज फजर तो कजा नहीं कर दी। तो कितने बड़े बड़े गुनाहों के मुकाबले में कि रावी भी बहुत ज्यादा परेशान है और इमाम मुसलसल उसको छूट दे रहे हैं और रहमत खुदा की उम्मीद दिला रहे हैं, लेकिन कहा कि मुझे डर था कि कहीं तेरी नमाज फजर तो कजा नहीं हो गई। तो बहरहाल इसका हवाला और वो देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये कि अगर है तो ये मजमून के एतबार से बहुत पुरअसर रिवायत है। अच्छा, अब नमाजी जो कजा होती हैं, देखिए नमाज सरता पर रहमत है, पूरी शुरू से लेकर आखिर तक रहमत ही रहमत है, लेकिन कभी कभी ये जो कजा हुई हुई नमाजें हैं ये बद्दुआ भी करती हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि, कि अगर किसी ने नमाज में यहां तक ताखीर की कि नमाज वाजिब का वक्त गुजर गया और फिर उसके बाद उसने उसकी कजा पढ़ ली, तो उसकी नमाज बारगाह खुदावंदी में टुकड़े टुकड़े होकर और बेहाल होकर पहुंचेगी। वो नमाजी उस नमाज के लिए कहेगी कि ऐ नमाजी, जिस तरह तूने मुझे जाया किया है, खुदा भी तुझे जाया करे। तो नमाज कजा करना और उसको बहुत ही मामूली चीज समझना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और भी वजह है इसकी कि असलन ये भी है कि लोगों ने इस सिलसिले में एक दूसरे को कहना सुनना भी छोड़ दिया है। एक सवाल होता है ना कि आखिर हम लोगों को नमाज के सिलसिले में कितना जोर दें, तो इतना जोर, जैसे आपके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है उठने में नमाज फजर को, अलार्म वगैरह काम नहीं करते, उठ के बंद करके सो जाते हैं, और भी कोई वजह, आप अपने दोस्तों से कहें कि आपको फोन करके उठाएं, घर में किसी दूसरे शख्स को जो कि पाबंदी से नमाज फजर के लिए उठता हो उसको प्रेशराइज करें कि आपको लाजमी उठाया करें, बीवियां जो हैं अपने शोहरों को उठाएं। देखिए वैसे तो बीवियां अपनी तमाम बातें शोहर से मनवा लेती हैं, लेकिन नमाज का पाबंद शोहर को नहीं बना पा रही। वो है ना, कोई किसी लतीफे में पढ़ रहा था कि बीवी शोहर को उठा रही होती, उठिए नमाज फजर का वक्त निकला जा रहा है, तो शोहर नींद में आकर कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, बाद में कजा पढ़ लूंगा। बीवी कहती है नहीं, शरीयत मना करती है नमाज फजर कजा करने से। शोहर कह रहा है तो शरीयत तो चार शादियों की भी इजाजत देती। तो बीवी कहती है सो जाए, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो एक हद तक सिर्फ हमने उस सिलसिले में उसको उठाते हैं, शरीयत को जहां तक हमारे लिए जरूरी हम समझ रहे होते हैं, उससे ज्यादा हम किसी को मजबूर नहीं करते। तो अब देखिए, नमाजों के कजा के सिलसिले में नाराजगी का इजहार करना चाहिए। एक मोमिना अपनी वालदा के सिलसिले में बयान कर रही थी कि उनकी वालदा अगर कभी किसी की नमाज फजर कजा हो जाती थी तो उस दिन का नाश्ता उसको नहीं मिलता था और किचन को लॉक कर दिया जाता था। अच्छा, हर शख्स के ज़ाहिर घर के आलात अलग अलग हैं, अलग अलग तरह का माहौल होता है, हर शख्स अपने मुताबिक देखे कि मैं इस गुनाह को अपने घर से कैसे ख़त्म करूं। कोई मुनासिब सख्ती भी सोच सकता है, कोई तरीक़ेकार वज़ा किया जा सकता है। अच्छा, एक अहम बात यह भी है कि एक सवाल है कि क्या अगर हम नमाजें कजा भी कर रहे हों और उसके बाद कजा पढ़ लेते हों तो क्या इससे नमाज कजा करने का गुनाह माफ हो जाता है? तो उलमा का कहना है कि देखिए, तौबा करनी अलग से जरूरी है, यानी अगर आपने नमाज की कजा पढ़ ली, नमाज फजर अक्सर व बेशतर कजा हो रही है, अमूमी नमाजें कजा हो रही हैं और हम उसकी कजा पढ़ लेते हैं, तो क्या ये गुनाह माफ हो जाएगा हमारा? उलमा कहते हैं नहीं, अलग से तौबा करनी जरूरी है कजा के अलावा। लोग कहेंगे भाई जब वो कजा पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो तौबा भी है? नहीं, तौबा नहीं है। मसलन मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, बहुत से लोग जानबूझकर ऑफिसेज जो लोग जाते हैं और किसी वजह से शर्मा हुजूरी की वजह से या कोई और वजूहत से वो नमाज नहीं पढ़ते और सारी पूरी की पूरी पांचों नमाजें घर पर आकर पढ़ रहे होते हैं और रोजाना कजा कर लेते हैं उनकी, यानी जो नमाजें ऑफिस के अंदर कजा हुई हैं जोहर असर, वो घर आकर उनकी कजा पढ़ लेते हैं, तो ये कजा पढ़ना काफी है? नहीं, तौबा करनी पड़ेगी। अच्छा, तौबा के मायने क्या है? कि आइंदा ना करने का आजम। तो ये तो आइंदा ना करने का आजम कर ही नहीं रहा है, ये तो तौबा कब शुमार हो रही? ये तो कह रहा है कि कल मैं दोबारा जाऊंगा फिर जोहर असर कजा करूंगा और उसके बाद फिर आकर जो है घर पे आकर कजा पढ़ लूंगा। तो इसका मतलब है ये तौबा, ये अगरचे नमाजें इसकी कजा अदा हो जाएंगी लेकिन उसके जिम्मे नमाज कजा करने का जो गुनाह है वो मुकम्मल तौर पर नहीं उतरेगा। हो सकता है कुछ अजाब में इसकी तख़फीफ हो जाए लेकिन ये इसकी ये अलग से तौबा करना जो वाजिब था वो उसके ऊपर उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा है। तौबा सिर्फ एक जबान से अल्फाज निकालने का नाम थोड़ी, उसके मायने कि आइंदा ना करने का अज़्म, ज़माने हाल में उस फेल को तर्क किया जाए, ज़माने माजी में उस फेल के लिहाज से नदामत हो और नमाज मुस्तकबिल में उस फेल के ना करने का अज़्म बिल जज़्म हो, ये तौबा की तारीफ शुमार होती, यानी पक्का इरादा कि आइंदा नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, लोग मुसलसल कजा करते हैं और उस कजा को अंजाम भी दे लेते हैं लेकिन वो गुनाह कजा माफ नहीं होता क्योंकि उसके लिए तौबा जरूरी है और सिर्फ जबान से तौबा कर लेना ये काफी नहीं है, उस अमल को ना करने का एक आजम होना चाहिए। एक ये बड़ा मसला है इसके अंदर। तो उस लिहाज से इसकी पाबंदी जरूरी है कि इंसान तौबा भी करे। अच्छा, एक अहम बात वही जिससे पहले मैंने अर्ज करते रहते हैं मुख्तलिफ, कि रोजाना के जो आमाल हैं वो आपके अच्छे और बुरे दोनों वो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। एक मोमिन के लिए किस कदर शर्मिंदगी की बात है कि इमाम उसके नाम अमाल में देखेंगे इसकी नमाजें कजा होती, इसकी नमाज फजर कजा होती अक्सर व बेशतर। एक मोमिन के लिए एक शर्म से एक डूब मर जाने का एक मुकाम पैदा हो जाता है, कितना अपने इमाम के सामने रोजाना की इस तरह की शर्मिंदगी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि जो नमाजें अपनी कजा करना शुरू करें उसके मसाइल नमाज की वाकफियत पैदा करें, अपने वजू वगैरह को बिल्कुल ठीक करें कि अच्छे सही तरह से वजू कैसे किया जाता है, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी गलती हो कि जिससे वजू बातिल होता हो तो उससे नमाजें भी बातिल हो जाएं, और अपनी दीगर नमाजें जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से महीने भर के अंदर कोशिश करके वो सही कर सकता है और उसके बाद फिर अपनी कजा नमाजें पढ़ना शुरू करें। वरना अगर ऐसी गलती कोई हुई जिससे नमाज बातिल होती है तो सारी नमाजें दोबारा पढ़ना पड़ेंगी। अच्छा, अब आ जाइए कजा नमाजों के जो फिकही अहकाम हैं वो क्या हैं। देखिए, पहला मसला, अब हम मुतफर्रिक किस्म के मसाइल को डिस्कस करेंगे, तौज़ीउल मसाइल में जिस तरीके से लिखे हुए ऐसे नहीं। एक सवाल ये अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि जिस पर खुद अपनी कजा नमाजें हों क्या वो मुस्तहब नमाजें पढ़ सकता है? तो दिमाग में ये बात रहे कि देखिए, रमजान के कजा रोजों की हद तक का तो ये मसला है कि जिस पर रमजान के कजा रोजे मौजूद हैं वो कोई मुस्तहब रोजा नहीं रख सकता, लेकिन ये मसला नमाजों का नहीं। जिस किसी शख्स पर भी अपनी वाजिब कजा नमाजें मौजूद हैं उसको इस बात का इख्तियार शरीयत ने दिया है कि वो मुस्तहब नमाजें पढ़ सकता है, मुस्तहब नमाजें उसको पढ़ने की इजाजत है शरीयत के अंदर। अलबत्ता रमजान के कजा रोजे अगर किसी के जिम्मे हैं, बहरहाल आगा सिस्तानी ने इसके अंदर एक बात और कही है कि मसलन अगर कोई शख्स नजर करके वाजिब करना चाहे तो वो कहते हैं ऐसी नजर करने में इश्काल है, अगर किसी के रमजान के कजा रोजे मौजूद हैं तो वो मन्नत ही रोजा भी नहीं रख सकता है, बल्कि ऐसी मन्नत भी मांगने में इश्काल है। वो कहते हैं नहीं, पहले अपनी कजा रोजे सारे उतारें, रमजान के कजा रोजे, उसके बाद फिर मन्नत वाले रोजे रखे जा सकते हैं। तो रमजान के कजा रोजों की हद तक है, लेकिन बहरहाल नमाजें जितनी भी कजा हो जाएं किसी की, तो उसको इख्तियार होता है कि वो मुस्तहबी नमाजें पढ़ सकता है। अच्छा, फिर एक मसला ये भी होता है कि क्या मुस्तहब नमाजों को छोड़कर कजा नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है या नहीं? क्या मुस्तहब नमाजें हम मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और अपनी कजा उतारते रहें? हमारा बड़ा दिल चाह रहा है कि मसला हम नमाज शब पढ़ें, तो हम नमाज शब मुकम्मल छोड़ दें और अपनी कजा उतारते रहें। तो शरीयत ने बहरहाल ये इस बात को कहा है, अगर दोनों चला सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहरहाल ये कि अपनी कजा नमाजें उतारना उसकी अहमियत ज्यादा है। कयामत में, आखरत में पूछा भी कजा नमाजों की हद तक जाएगा, मुस्तहब नमाजों का आपसे ना अजाब होगा ना उसका पूछा जाएगा, तो बेहतर है कि इंसान जल्द अज जल्द अपनी कजा नमाजों को उतार दे, बेहतर है। अच्छा, फिर एक मसला एक और भी होता है कि जिस पर अपनी नमाजें कजा बाकी हैं, क्या वो मरहूम की तरफ से नमाजें अदा कर सकता है? तो देखिए, होता है ना कि बाज़ औक़ात की कोई कहे कि ठीक है, हमें अपनी तो मुस्तहब नमाजें वगैरह पढ़ने की इजाजत है, जैसे कि अभी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पे अपनी कजा नमाजें, लेकिन हम किसी मरहूम की तरफ से ना, अपने वालिद की नमाजें, मरहूम वालिद मरहूम की मसलन कोई नमाजें उतारने लगे, अपनी वालदा मरहूमा की, अपने किसी और रिश्तेदार की, तो उसको भी इस बात की इजाजत है कि जिस पर अपनी नमाजें कजा हों वो किसी भी मरहूम की तरफ से भी नमाजें अदा कर सकता है। अच्छा, तबर्रुअन भी कर सकता है और इजारे पर भी कर सकता है। तबर्रुअन कहते हैं यानी बगैर किसी पैसे वैसे लिए, हमारा खुद दिल चाह रहा है कि हम अपने किसी मरहूम रिश्तेदार की नमाजें पढ़ें बगैर किसी उजरत वगैरह की, उसकी भी इजाजत है। और जिस पर अपनी कजा नमाजें हैं वो किसी की इजारे पर कजा नमाजें भी पढ़ सकता है, बशर्ते कि वो तमाम शराइत वगैरह उसकी पूरी होती। सिर्फ मुस्तहब रोजे वो अलबत्ता नहीं रखे जा सकते, ना अपनी तरफ से ना किसी मरहूम की तरफ से, जिस पर रमजान का कोई कजा रोजा बाकी। अच्छा, एक सवाल इसी के जिम्न में ही आता है, अगरचे इसका जवाब मौलाना आमिर आसूबी साहब अपने दर्स में दे चुके हैं, कि अगर सोते हुए शख्स की नमाज कजा हो रही है तो क्या उसको उठाना वाजिब है? देखिए, अगर कोई शख्स मसलन बहुत थक कर सो रहा है, बहुत गाफिल होकर सो रहा है और वो नमाज पढ़ता है, उसे उठाया जाएगा, वो फौरन पढ़ लेगा नमाज, तो ऐसे शख्स को नमाजे कोई सी भी नमाज के लिए जिस वक्त वो सो रहा है उठाना वाजिब नहीं है, चाहे उसकी नमाज कजा ही क्यों ना हो रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको उठाना हराम हो, आप उठा सकती हैं, बल्कि हो सकता है कि वो बाद में आपसे शिकायत भी करे कि भाई मेरे नमाज का वक्त निकल गया, आपने उठाया नहीं। यहां वाजिब की हद तक बात हो रही, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नहीं भाई फजीलत इसके हाथ से ना निकले और जो है इसकी नमाज कजा ना हो, ये बाद में नाराज हम पर ना हो, तो उसको उठाने की इजाजत है। लेकिन सोते हुए शख्स को चाहे उसकी नमाज कजा ही क्यों ना हो रही हो, उसको उठाना वाजिब नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि शरीयत के कानून पता होने चाहिए, वरना इंसान अफरात तफरीत का शिकार हो जाता है। मसलन रोजे, रमजान का रोजा चल रहा है और आप किसी शख्स को भूले से खाते पीते देख लें, पूरा वो खाना खा रहा है बैठ के। इब्तदाई रोजों में ज्यादा हो सकता है कि इंसान के जब तक रूटीन रमजान का बना नहीं होता पिछले दिन का और वो भूलकर कुछ खाने लगे, आपके लिए उसको बताना बिल्कुल भी वाजिब नहीं। और बताना कोई सवाब वाला या कोई ताकीदी मुस्तहब भी नहीं, बल्कि शायद इस्लाम, शायद ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, पसंद भी ना करे। कुछ रिवायतों में यह बात आई है कि इंसान भूले से अगर कोई चीज खा पी रहा होता है तो एक लिहाज से अल्लाह उसको रोजे की हालत में खिला रहा होता है, तो आप पर वाजिब नहीं है कि आप उसको जाकर बताएं कि अरे आपका रोजा है आप क्यों खा रहे हैं, या आपका रोजा टूटा जा रहा है और वो बेचारा घबरा के जो है उसको मुंह से निकालने की फिक्र में हो जाए। नहीं, अगर वो खा रहा है, पूरा मील भी आपके सामने खा रहा है बैठ के एहतमाम के साथ, तब भी उसको बताना वाजिब नहीं। और खुद वो तो क्योंकि भूल से खा रहा है, हाँ, अगर कोई भूला हुआ नहीं है, जानबूझ के रोजा वोजा तोड़ रहा है, फिर अमर बिलमारूफ के लिहाज से जिम्मेदारी बनेगी। मसलन कोई शख्स नजिस हो गया, कहीं चलता वो आपके साथ ही जा रहा है, आपको पता है कि मसलन हमारा ही घर है, ऊपर से जो ये छींटे आकर पड़े हैं, मसलन बच्चे के पेशाब वाले छींटे इसके कपड़ों के ऊपर आ गए, और उसने ख्याल नहीं किया, उसी में उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, आप पर बताना वाजिब नहीं है कि आपके कपड़े नजिस हो गए। मसलन एयरलाइन में सफर कर रहे हैं, आपके बराबर वाले रिश्तेदार ने जो है वो जूस मंगाया, उसने एयर हॉस्टेस ने गलती से शराब के कोई वो लाके पैक सामने रख दिया, और वो गलती से उठाकर पीना चाह रहा है, आप पर ये भी बताना वाजिब नहीं। ठीक है, आप उसको उस लिहाज से कि भाई क्यों इसके मुंह में निजासत जाए, इसकी परेशानी में मुबतला हो, ये अलग बात है, लेकिन वाजिब नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि जो शरीयत ने आप पर वाजिब नहीं की। तो ये जो सोने वाला शख्स का जो मसला है, जिसकी नमाज कजा हुई जा रही है, उसके लिए भी ये आता है कि इसको उठाना वाजिब नहीं। हाँ, अलबत्ता अमरे बिल मारूफ के लिहाज से हो सकता है, हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक दफा एक मिसाल पेश की थी कि घर में मसलन दो अफराद हैं, एक हमेशा नमाज पढ़ता है, आपसे कहकर भी सोया है कि मुझे उठा देना, और एक दूसरा आपका मसलन भाई है, कोई और रिश्तेदार है, वो कहकर सोया, खबरदार मुझे नहीं उठाना, बहुत ज्यादा मैं नींद में हूं और मुझे नमाज फजर के लिए उठाने की जरूरत नहीं, और वो पढ़ता भी नहीं है आमतौर पर, किसको उठाएं? जो कहकर सोया कि मुझे नहीं उठाना, उसी को उठाना वाजिब है। यानी अमरे बिल मारूफ के लिहाज से ये तो लाजमी है। ये इसको हम नहीं कहेंगे कि ये मसलन सोता हुआ शख्स जो है शुबे मौजूदिया में है, तो उसको यही समझा जाएगा कि जो सोता हुआ शख्स है इसको उठाना जो है वाजिब नहीं है। अलबत्त ये जो कहकर सोया है कि मुझे नहीं उठाना, अमरे बिल मारूफ के लिहाज से ये गुनाह करते हुए सो रहा है, तो इसको उस लिहाज से एक जिम्मेदारी बन सकती है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम बैठकर अपनी कजा नमाजें पढ़ सकते हैं? कजा नमाजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, 20-20, 30-30, 40-40 साल की नमाजें मसलन लोगों के कजा हैं, 60-60, 70-70 साल की नमाजें कजा हैं, तो अब क्या करें? क्या इजाजत है कि हम बैठकर नमाज पढ़ लें? तो एक देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बीमार शख्स जब तक खड़ा होने से माजूर ना हो, तब तक उसको इजाजत नहीं है कि वो बैठकर नमाज पढ़े। मसलन वो कुर्सी के सहारा लेकर खड़ा हो सकता है, कुर्सी का सहारा ले, वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है, दीवार का सहारा ले, असा वगैरह को पकड़कर खड़ा हो सकता है बमुश्किल, उसका सहारा ले। यानी अपनी उस अदा नमाज में, कजा तो छोड़िए अभी अदा की बात करते हैं, अदा नमाज भी उस वक्त तक बैठने की इजाजत नहीं है जब तक कि वो कयाम में, कयाम से आजिज ना हो जाए। अच्छा, इसमें थकावट कमजोरी वगैरह नहीं चलेगी। अच्छा, अब इसके अंदर चले, अभी तो अदा नमाज की हद तक तो ये मसला हो सकता है कि चलें उसको बैठकर, क्योंकि खड़ा हो ही नहीं सकता, तो बैठकर नमाज पढ़ने की कुछ हालतों में इजाजत मिल जाए, कुछ शराइत वगैरह है उसकी, वो इंशाल्लाह जब बैठकर नमाज पढ़ने के फिकही अहकाम बयान होंगे तो उसके अंदर हम बयान करेंगे उसकी तफसील की, कब कब किस किस कैफियत के साथ पढ़ी जाएगी। अच्छा, जब उसने कहा कि अब वो बीमार है, अपनी अदा नमाजें तो बैठकर पढ़ ही रहा है, उसने सोचा कि जब और तो कोई काम है नहीं, बीमार भी हूं, तो क्यों ना अपनी कजा नमाजें पढ़ लूं। जब मैं अदा अपनी बैठ के पढ़ रहा हूं, तो क्या इस शख्स को इजाजत है कि अपनी कजा नमाजों को भी बैठकर पढ़ ले? तो इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि बीमार यानी ऐसा शख्स जिसको अपनी सेहतियाबी से मायूसी है, बल्कि इससे भी ज्यादा बेहतर लफ्ज ये इस्तेमाल किया जाए कि जिसको अपनी बहबूदी से मायूसी हो। देखिए, हो सकता है कोई शख्स मुकम्मल सेहतियाब ना हो, आप कहेंगे जब तक पूरी सेहत ना मिल जाए, लेकिन बहबूद आ जाए, यानी हालात ऐसी बेहतर हो गए कि इसने खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, चाहे बीमारी अभी रफा नहीं हुई, यानी ज्यादा अच्छा अल्फाज, अच्छे अल्फाज ये होंगे कि ये अपनी बेहतरी, इसकी तबीयत में इतनी आ जाए कि खड़े होकर नमाजें पढ़ सके। तो हो सकता है कि अभी नहीं, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक हफ्ते बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि खड़ा होकर नमाज पढ़ सकूं, 2 महीने बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं, डॉक्टरों ने इत्मीनान दिलाया है कि अभी तो आपको फालिज का अटैक हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आप साल 2 साल के अंदर रिकवर हो जाएंगे और खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकेंगे। ऐसे शख्स के लिए जिसको अपनी बहबूदी की मुस्तकबिल में उम्मीद है, इस शख्स को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपनी कजा नमाजों को बैठ के पढ़े, चाहे साल 2 साल ही क्यों ना लग जाए इसके अंदर, यानी एक तवील अरसा, लेकिन उसको पता है कि आगे चलकर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इसे अपनी बहबूदी या सेहत याबी की उम्मीद है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी के अंदर मुबतला है कि इसको अपनी हालत की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है, उसे पता है बस अब आइंदा सारी जिंदगी इसी तरह से, मैं कभी खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकूंगा कि नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़ सकूं, जो अपनी सेहत याबी या बहबूदी से मायूस हो उसको फकत इस बात की इजाजत मिलती है कि अपनी कजा नमाजों को बैठ के पढ़ सके। तो अच्छा, इसमें आगा सिस्तानी का भी यही फतवा है और रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह खामेनेई का भी यही फतवा है, दोनों एक बात फरमाते हैं कि सेहत याबी का इम्कान हो या बहबूदी का इम्कान हो तो फिर ये शख्स बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता। हां, अलबत्ता अगर ये मायूस हो जाए कि अब सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही रहना है तो फिर इसको इजाजत मिलती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज लोग और भी पूछते हैं कि बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है तो क्या थकावट की वजह से हम बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं? तो थकावट वगैरह की वजह से या नमाजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से बैठकर नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती, तो ये तो बिल्कुल चैप्टर उस लिहाज से क्लोज कर देना चाहिए कि इसमें अमूमी हालात में, सिवाय इसके कि कायाम से आजिज आ जाए और मुस्तकिल सारी जिंदगी के लिए मायूसी हो जाए, तब इसको कजा नमाजें बैठ के पढ़ने की इजाजत मिलेगी। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही एक दिलचस्प मसला आता है। एक शख्स सेहतियाबी से मायूस हो गया और उसने बैठकर अपनी कजा नमाजें पढ़ ली, बाद में कोई मुआवजा हो गया, और मेडिकल साइंस में मुआवजात बहुत होते रहते हैं, और ये सेहतियाब हो गया और ये अपनी सारी नमाजें उस फिकही मसले के तहत कि मैं अपनी सेहतियाबी से मायूस हूं, अब मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, और इसने अपनी 10-20 साल जितनी भी है नमाजें सारी बैठे बैठे अदा कर दी, अब ये ठीक हो गया, अब उन पढ़ी गई पिछली नमाजों का क्या होगा? क्या उसको सही मान लिया जाएगा कि भाई ठीक है, उस वक्त इसकी जिम्मेदारी यही थी और उसने वो नमाजें पढ़ ली हैं तो ठीक है, बस वो नमाजें अदा हो गई। यहां पर एक मसला ये है कि आयतुल्ला सीस्तानी के फतवे में एहतियात लाजिम यह है कि उन सब नमाजों का अदा करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा मसला हो गया, तो देखिए गुना जाहिर की बात कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि उन नमाजों की कजा को दोबारा अंजाम देना पड़ेगा, सिवाय इसके कि दूसरा कोई और मुज्तहिद जिसकी तरफ रुजू हो वो उसकी इजाजत दे दे। अलबत्ता आयतुल्ला खामेनेई का जो फतवा है वो ये है कि इआदा लाजिम नहीं है इस सिलसिले में, और जो उसने पढ़ ली बस वो नमाजें सही शुमार हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल आयतुल्ला सिस्तानी का ये नजरिया है और अल आलम फल आलम की रियायत करते हुए कि उनके बाद आपकी तहकीक में दूसरे बड़े नंबर का मुज्तहिद कौन है उसका फतवा देखना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक आप अमल करें कि अगर वो इजाजत दे रहा है तो ठीक है, इआदा जरूरी नहीं रहेगा, और अगर वो इजाजत ना दे तो फिर आपको उन नमाजों की कजा दोबारा अंजाम देना होगी। ये एक बड़ा मसला और एक दिलचस्प मसला भी था कि सेहतियाबी से मायूस था और नमाजें अदा कर ली और उसके बाद फिर सेहतियाबी मिल गई उसको, तो एक लिहाज से वो ये समझे कि वो सेहतियाबी मिलने का भी तो बाज़ औक़ात होता है ना कि कुछ ना कुछ एक जुर्माना समझ लीजिए, बहरहाल उसको वो उसको करना पड़ेगा और अंजाम देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो अभी आपने सुना कि बहबूद या सेहतियाबी से मायूस शख्स अगर ये बैठकर नमाज पढ़े तो उसको बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत है, तो आम तौर पर जिस तरीके से एक मसला मशहूर है कि अगर कोई शख्स बैठकर नमाज पढ़े तो 2 रकत बैठकर एक खड़ी होकर पढ़ी जाने वाली नमाज के बराबर होती है, तो क्या ये शख्स बैठकर डबल रकात पढ़ेगा ये जितनी रकात हैं बस उतनी ही पड़ेगा? तो देखिए, ये जो वाजिब नमाजों की हद तक वाला के जो नमाज पंजगाना है, जो कोई भी शख्स बीमारी वगैरह की वजह से बैठकर पढ़ता है तो उसको रकात को डबल नहीं करना होता, उसको रकात को डबल नहीं करना है और वो जितनी रकात हैं बैठकर भी उतनी ही रकात पड़ेगा। लोग आमतौर पर इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि शायद कि मुस्तहब नमाज वाला हुक्म जो है इसके अंदर लगे। अच्छा, मुस्तहब नमाजों को अलबत्ता उलमा कहते हैं कि अगर कोई शख्स बैठकर पढ़े हालत इख्तियार में भी मुस्ताब नमाजों को बैठकर पढ़ने की इजाजत है, बल्कि इस हद तक इजाजत है कि मसलन आप दो रकत नमाज मुस्ताब पढ़ रही हैं, आपने कहा कि एक रकत खड़े होकर पढ़ूंगी एक रकत बैठ के पढ़ूंगी, बिल्कुल इसकी भी इजाजत है। आप कहीं भी दरमियान में अलहम्द का आपने सूरा पढ़ के खत्म किया, उसके बाद मूड नहीं हो रहा, आपने कहा दूसरा सूरा मैं बैठ के पढ़ूंगी, कोई बात नहीं बैठ के पढ़ लीजिए, तो कभी भी जब चाहें आप बैठ सकती हैं उसमें और जब चाहें खड़ी हो सकती हैं, मुस्ताब नमाजों में इसकी इजाजत है। लेकिन जाहिर है वाजिब नमाजों के जो मसाइल हैं अलग हैं, नमाज कजा और नमाज अदा जो पंजगाना है उसके तमाम अहकाम इस सिलसिले में एक है, ना तो डबल करना है आपने, और जितनी उसकी रकात हैं असलन उतनी ही बाकी रखनी। तो ये दिमाग में उस लिहाज से चीज रहनी चाहिए। अच्छा, अब एक और मसला इसके अंदर ये आता है कि क्या मुस्तहब नमाजों में हम कजाए उम्र की नियत कर सकते हैं? जैसे कि अभी आपकी खिदमत में इससे पहले बयान हुआ कि जनाब बहुत लोगों की नमाज कजा होती हैं तो नमाज कजा को पहले उतारें और मुस्तहब को सबको छोड़ दें, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि दोनों की नियतों को मिला दें, कजाए उम्र भी हमारी अदा हो जाए, मसलन नमाज फजर हम पढ़ रहे हैं कजाए उम्र पिछली नमाज फजर कोई जिंदगी की, हम चाह रहे हैं कि इसी के अंदर नमाज फजर की जो नमाज शब की जो दो रकात है उसकी भी नियत साथ ही मिला दें ताकि हमारी दोनों नमाजें अदा हो जाएं। तो ये बात याद रख लें कि मुस्तहब नमाजों में कजाए उमरी वगैरह की नियत नहीं कर सकते, दोनों को मिला दें। मसलन आपने नमाज फजर की कजा पढ़ रही हैं तो वह नमाज फजर की कजा ही शुमार होगी, वो नमाज शब की जो दो रकात है वो काउंट नहीं होगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जहां पर उलमा ने इसको बयान किया इसको लोगों ने उस लिहाज से समझा नहीं। देखिए एक होता है ना कि सारी जिंदगी इंसान की नमाज कजा इतनी सारी 20-30 साल की उसको नमाजें पढ़ना है, अब वो उसके दिल में एक अफसोस होता है कि काश मैं अपनी नमाजें सारी मेरी अदा होती तो आज मैं कितने आराम से अपनी सारी मुस्ताहब नमाजें इतनी सारी मुस्ताहब नमाजें मैं उनको पढ़ रही होती, तो फकत उस अफसोस को करने की वजह से इसको सवाब मिल सकता है। वो अफसोस करने की वजह से सवाब मिलना ये फजल परवरदिगार है, लेकिन उस ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी नमाज शब अदा हो गई, ये नियत एक ही की करेगा बस नमाज कजा की, और उस अफसोस की वजह से हो सकता है कि उसको उस मुस्ताब नमाज का सवाब मिल जाए। देखिए कितना ऐसा होता है, आप नहीं पढ़ती हैं रिवायात के अंदर कि भाई फलां अगर अमल किया उस फलां अमल करने का सवाब यह कि इसे हज मकबूल का सवाब मिलेगा, तो अगर कोई शख्स वो फलां अमल कर ले तो उसके बाद हज पे ना जाए कि हज मकबूल सवाब सवाब ही तो लेना है हज में, बस ये अदा हो गया मेरा हज हो गया तो हज अदा नहीं होगा, उसका सवाब उसको मिलना वो परवरदिगार का फजल है, लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि इसका हज अदा हो गया। फलां अगर अमल किया मसलन औरत जो है वो प्रेगनेंसी की हालत में इंतकाल कर गई कुछ रिवायतों में, डिलीवरी की हालत में इंतकाल कर गई तो उसको शहीद का सवाब मिलता है, तो अब ये नहीं होगा कि शहीद के अहकाम इसके ऊपर जारी हो जाएंगे कि बगैर गुसल के और उन्हीं कपड़ों के अंदर मसलन उसको दफन कर दिया जाए, नहीं, सवाब शहीद मिलना एक अलग चीज है और ये अदा होना एक अलग चीज है। इसी तरीके से ये नमाज शब भी अदा नहीं होगी, शुमार नहीं किया जाएगा कि इसको नमाज शब गोया इसने पढ़ ली, हां परवरदिगार अपने फजल से अपनी अता से इसको उस अफसोस की बिना पर काश अगर मेरी कजा नमाजें ना होती तो मैं आज ये सब मुस्ताहब नमाजें पढ़ती, तो उस अफसोस करने की वजह से उसका सवाब मिल सकता है, लेकिन वो नमाज शब अदा नहीं होगी, नमाज कजा की नियत से जो नमाज पढ़ी जाएगी वो कजा ही नमाज उतरेगी आपकी, उससे नमाज शब अदा नहीं होगी। ये एक दिमाग में रहे। अच्छा एक चीज होती है जैसे अभी इसको कि मसलन अगर कोई शख्स नमाज शब अगर पढ़ रहा है, जैसे कि अभी बयान हुआ इसमें पहली लाइन में गलती लिखी हुई है, अगर कोई शख्स नमाज फजर पढ़ रहा हो, नमाज फजर नहीं नमाज शब पढ़ रहा हो, तो वो उसमें कजा नमाज की नियत नहीं कर सकता, अगर कजा की नियत से नमाज पढ़े तो वो नमाज शब शुमार नहीं होगी और कजा ही शुमार की जाएगी। ये दिमाग में रहे कि नमाज शब की नियत से जो नमाज पढ़ी जाएगी वो शब की शुमार होगी, नमाज कजा की नियत से जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज कजा शुमार होगी। अच्छा अब एक मसला ये आता है कि क्या वाजिब नमाज के साथ मुस्तहब नमाज का तदाखुल हो सकता है? तदाखुल कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज में मिला देना, दाखिल कर देना, जैसे यही वाजिब नमाज का भी हम जिक्र कर रहे थे कि हम कोई वाजिब नमाज पढ़ रहे हैं, उसी में हमने ना मुस्ताहब नमाज की भी नियत साथ में कर ली, तो ये तो आपने सुन लिया कि नहीं ऐसा होना मुमकिन नहीं। अच्छा, ये चीज रोजे में भी मुमकिन नहीं, रोजे में भी तदाखुल नहीं चलता है। मसलन आपने कहा कि आप पर कजा रोजे हैं रमजान के, जिस पर भी रमजान का कोई कजा वाजिब रोजा मौजूद हो वो कोई मुस्ताहब रोजा नहीं रख सकता। तो अगर वो ये दिल में ये नियत करे, मसलन ईद गदीर का दिन आ गया, 18 जिलहज, ईद मुबाहला 24 जिलहज, या मसलन 15 शाबान, और रोजा रखने को आपको बहुत दिल चाह रहा है लेकिन आपके रमजान के पिछले बहुत सारे रोजे कजा हैं, आपने कहा कि मैं दोनों की नियत कर लेती हूं। अगर किसी शख्स ने रोजे की नियत में तदाखुल किया, वाजिब के साथ कोई भी दूसरा रोजा मिला लिया, मुस्ताहब रोजा मिला लिया, तो इसके दोनों रोजे शुमार नहीं होंगे, ना इसका कजा उतरेगा ना इसका मुस्ताहब वाले रोजा अदा होगा। बिल्कुल एक नियत होनी चाहिए, रोजे में भी एक नियत होनी चाहिए कि आप किस नियत से वो रोजा रख रही हैं। और जाहिर है कि अगर रमजान का वाजिब रोजा है तो उसी दिन वो जो मखसूस दिन है, वो जो 18 जिलहज है, वो 24 जिलहज है, या 15 शाबान है, इसी तरह का कोई और दिन है, आप नियत ये करें कि मैं इसको कजा रोजे ही की नियत से रख रही हूं, लेकिन अफसोस है कि काश मुझ पर कजा रोजे ना होते तो आज मैं भी मुस्ताहब रोजा रखती, तो इस अफसोस करने की वजह से आपको एक सवाब मिल जाएगा। लेकिन आपका यह नहीं होगा कि आपने दो नियतों को एक रोजे के अंदर जमा करें, या दो कजा नमाजों कजा नमाज के साथ मुस्ताहब मिला दें, वाजिब रोजे के साथ मुस्ताहब मिला दें, इसकी आपको इजाजत नहीं है। यह दो अलग अलग वाजिब रोजे हैं, उनको एक नियत में कर लें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा अपना भी कजा उतर जाए और मरहूम वालिद की नियत भी उसी के अंदर कर लें, यह नहीं हो सकता। और अगर इस तरीके से दो नियतें जमा की, वाजिब के साथ मुस्ताहब रोजे की नियत भी कर ली, तो दोनों रोजे गए, बातिल हो जाएंगे और कोई उसका फायदा है, वो कजा भी नहीं उतरेगा और ना ही वो मुस्ताहब रोजा शुमार होगा। तो एक ये मसला इसके अंदर आता है। अच्छा, अलबत्ता एक चीज के अंदर, क्या मुस्ताहब नमाजों का मुस्ताहब नमाजों के साथ तदाखुल हो सकता है? ये एक मसला है। मसलन नमाज नाफिले मगरिब हम पढ़ रहे हैं, उसी नाफिले मगरिब में हमने मसलन नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन भी शामिल कर ली। अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद। उसी में हमने नमाज गुफैला भी शामिल कर ली। तो यहां पर मुस्तहब नमाजों में मुस्तहब एक मुस्तहब नमाज का दूसरी मुस्तहब नमाजों के साथ तदाखुल मुमकिन है, यानी आप एक ही नियत करके दो दो तीन तीन चार चार नमाजों की नियत करके उस नमाज को पढ़ लें तो सबका सवाब मिल जाएगा। अलबत्ता इसमें एक चीज ये करनी है कि अगर कोई नमाज ऐसी है जो किसी खास तरीके से पढ़ी जाने वाली है तो तरीका उस नमाज का डालना पड़ेगा। मसलन आपने नमाज ज़ियारत है, नाफिले मगरिब है, ये तो बिल्कुल फजर ही की तरह से पढ़ी जाती है, लेकिन आप उसके साथ मिला रही हैं नमाज गुफैला को, अब तरीका नमाज गुफैला का चलेगा, तरीका गुफैला का होगा, नियतें ये दोनों तीनों हो जाएंगी, ये इस तरह से होगा। या मसलन नमाज जाफर तैयार के साथ आप मिलाना चाह रही हैं नमाज शब को, तो इसमें मिला सकती हैं लेकिन तरीका नमाज जाफर तैयार का चलेगा, यानी वो तस्बीहात अरबा वगैरह जो पढ़ना पड़ती हैं 15 मरतबा रुकू से पहले और उसके बाद 10 मरतबा रुकू में और 10 मरतबा समय अल्लाह में और 10 मरतबा पहले सजदे में और 10 मरतबा पहले सजदे से उठने के बाद अस्तग़फिरुल्लाह में और 10 मरतबा दूसरे सजदे में और फिर 10 मरतबा दूसरे सजदे से उठने के बाद, इस तरह से करके 300 दफा चार रकात के अंदर पढ़नी पड़ती, दो दो रकात करके पढ़ी जाएगी। तो तरीका जो है वो नमाज जाफर तैयार का चलेगा, क्योंकि वो मखसूस तरीक़ेकार वाली नमाज है, वो फैला मखसूस तरीक़ेकार से पढ़ी जाने वाली नमाज है, तो तरीक़ेकार उसका चलेगा, फिर कितनी भी मुस्तहब नियतें साथ में शामिल कर लें। तो ये दिमाग में इस लिहाज से रहे, तो तदाखुल जो है वो मुस्तहब नमाजों के अंदर चल जाता है, बस मखसूस तरीके से पढ़ी जाने वाली नमाज का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, क्या नमाज आयात की भी कजा होती है? अच्छा, अब देखिए इसमें अक्सर ये होता है कि जाहिर है वैसे तो नमाज आयात की कजा होगी, मसलन कोई शख्स चांद गिरन सूरज गिरन उसके सामने हो रहा है और वो गुनाह करते हुए ना पढ़े उसको, तो उसकी कजा करनी पड़ेगी। अलबत्ता अगर किसी शख्स को गहन का इल्म ना हो, ये मसला आता है, तो फिर देखा जाए, फिर ना इस मसले के दो हिस्से बन जाते हैं। ये देखा जाएगा वो चांद ग्रहण या जो सूरज ग्रहण है उसको जुजवी ग्रहण लगा था या कुल्ली लगा था। अगर जुजवी ग्रहण लगा था और उसको इल्म ना हो सका और जब वो ग्रहण विरहण होकर खत्म हो गया, बाद में पता चले अरे आपको पता नहीं आज तो मसलन चांद ग्रहण था, कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं, तो ऐसे शख्स पर नमाज आयात की कजा करनी वाजिब नहीं क्योंकि जुजवी ग्रहण था। जुजवी ग्रहण वाले को नमाज आयात की कजा करनी वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर ग्रहण कुल्ली लगा था और इसके बावजूद इसको इल्म नहीं हो सका, ये सोता रह गया पूरे वक्त, ये किसी ऐसी जगह पे था कि जहां इसको पता ही ना चल सका, इल्म ना था और ग्रहण एक कुल्ली लगकर खत्म हो गया और बाद में इसको इल्म हुआ, उस नमाज आयात की इसको कजा करनी पड़ेगी। जुजवी ग्रहण में अगर इल्म नहीं था तो कजा नहीं है, कुल्ली ग्रहण था और इल्म ना था और बाद में पता चला इसको, उस नमाज की कजा करनी। जुजवी में कजा नहीं करनी, कुल्ली में कजा करनी, यानी मुकम्मल ग्रहण अगर लगाओ। मसला कहां पर आता है ज्यादा कि क्या जलजले की नमाज आयात, देखिए जिस वक्त जलजला आ रहा होता है उस वक्त तो कोई कैसे नमाज पढ़े, तो जाहिर है कि अच्छा जब जलजला आकर जब खत्म होगा तभी इंसान आमतौर पर पढ़ सकेगा नमाज। कुछ उलामा का तो ये नजरिया है, बल्कि ज्यादातर उलामा का है सिवाय आगा सिस्तानी कि जलजले की जो नमाज आयात है ना ये कभी कजा नहीं होती, और एहतियात वाजिब यह है कि बाद में भी कभी भी इसको पढ़ सके, इसको पढ़ना जरूरी, यानी ये नहीं सोच सकता कि भाई अब तो एक घंटा गुजर गया, दो घंटे गुजर गए, पांच दिन गुजर गए जलजले को आए हुए, नहीं, इसको अगर उसने नहीं पढ़ी है तो एहतियात वाजिब यह है कि उसकी कजा अंजाम दे। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर ज्यादा देर नहीं गुजरी, यानी जो जलजला आया उससे बहुत मुत्तसिल ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए, बहुत करीब, एक लिहाज से बस ये समझेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही करीब उस जलजले से नमाज पढ़ ली जाए तो पढ़नी वाजिब है। लेकिन अगर ये बिलफर्ज गुना करते हुए घबराहट में किसी वजह से ना पढ़े और इतना टाइम गुजर जाए, सेटल डाउन होते होते आधा घंटा लग गया, एक घंटा लग गया, अब इस पर जलजले की नमाज आयात की कजा वाजिब नहीं, टाइम गुजर गया, मुत्तसिल बिल्कुल उससे अगर ये पढ़ लेता, पढ़ना वाजिब थी, चाहे गुनाह करते हुए इसने छोड़ दी तो तौबा करे, चाहे ये वाकयतन मजबूर था पढ़ ही नहीं सकता था, ऐसी घबराहट थी, अफरा तफरी थी, बिल्डिंग खाली करनी थी, निकल के बाहर जाना था, पता चला 15-20 मिनट लग गए बाहर निकलने में, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, अब नमाज आयात की कजा करनी वाजिब नहीं। अलबत्त फिर भी फरमाते हैं एहतियात मुस्तहब है कि कजा कर ले, लेकिन वाजिब नहीं। तो ये एक दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ज़िमनन बता दूं, वैसे नमाज आयात के अलग से एक दिलचस्प फिक्री मसाइल हैं जो कि जाहिर है अपने मुकाम पर कभी मौका मिला तो आएंगे। ये जितने भी आफ्टर शॉक्स आते हैं इनको भी ऐसा ही शुमार किया जाएगा कि जैसे जलजला आए। लोग कहते हैं एक तो मेन जलजला आ गया, फिर छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं, जितने आफ्टर शॉक्स आएंगे उतनी ही नमाज आयात पढ़नी पड़ती। बाज़ोकात होता है कि 20-20 आफ्टर शॉक्स आते हैं, 10-10 आफ्टर शॉक्स आते हैं, हर आफ्टर शॉक को एक अलग जलजला शुमार किया जाएगा शरीयत में और आपको उतनी ही नमाज आयात पढ़नी पड़ेंगी। अलबत्ता वो जरूर रहे कि उस निशानी से मुत्तसिल इतना ज्यादा वक्त ना गुजर जाए कि बहुत ताखिर शुमार हो, बहुत करीब करीब पढ़ ली जाए तो सही है, लेकिन अगर गुनाह करते हुए चाहे छोड़ी है वो नमाज, या नहीं पढ़ी आपने और इतनी ताखिर हो गई, या ये कि वाकई कोई उजुर ही पेश आ गया था कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते थे क्योंकि बगैर वजू के नहीं होती, वजू का पानी उस वक्त जाना वो अवेलेबल नहीं था, बिल्डिंग को खाली करना था, एक जान बचानी भी लाजमी थी और इतना वक्त गुजर गया, तो बहरहाल फिर उसके बाद इतना वक्त अगर गुजर जाए तो उस नमाज आयात की कजा नहीं होती, यानी जलजले की वजह से जो वाजिब होती। लेकिन बाकी जो और उलमा हैं, रहबर मौजम हैं, आयतुल्ला खोई हैं, दीगर और उलमा है, वो कहते हैं एहतियात वाजिब है कि बाद में भी अगर आपने उस वक्त नहीं पढ़ी है तो बाद में भी उसकी कजा अंजाम देना है बर बिना एहतियात वाजिब। लेकिन आगा सिस्तानी का सिर्फ इसमें एक इख्तलाफ है। अच्छा, अब एक मसला ये भी आता है कि अब हम अपनी कजा नमाजें उतारना चाह रहे हैं, अब हम इसका तायुन कैसे करें, कितनी नमाजें, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई कभी हमने पढ़ी थी कभी नहीं पढ़ी थी, कुछ याद नहीं अब कि कितनी हमारी रह हम पर वाजिब नमाजें कितनी। तो देखिए इसमें ये बात याद रहे कि कम से कम शरीयत ने आपको एक सहूलत दी है कि कम से कम एक यकीनी अदद का तायुन करें, कम से कम यकीनी अदद का। मसलन आपके सामने एक रेंज होगी कि कम से कम 3 साल की तो वाजिब है ही, मिसाल दे रहा हूं, और मुमकिन है कि 5 साल की भी हो। अब 3 और 5 में जो है वो है आपके पास एक फिगर, तो इसमें कम से कम पर बिना रखते हुए आप पर ये वाजिब होगा कि कम से कम 3 साल की आप फजा नमाजें अपनी पढ़ लें, यानी कम पर बिना रखते हुए। और उसके बाद अगर कयामत के दिन पता चला कि भाई नहीं, आपकी तो मसलन 4 साल की नमाजें थी या 5 साल की थी, तो वो नमाजें इंशाल्लाह माफ हो जाएंगी। तो वाजिब क्या है? वाजिब यह है कि कम से कम की एक तादाद का तो तायुन आपको कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, एक अंदाजा कायम करें। अंदाजा कायम करने के हो सकता, लोग तो होता है ना कि फौरन हार मान लेते हैं, नहीं हमें कुछ भी नहीं पता है। नहीं भाई, कॉपी पेंसिल उठाइए, जिंदगी आपके सामने है, आपको खुद अपने अच्छा बहुत से हमने देखा है कि मौलवी हजरात के पास आते हैं, आप बताइए कि मुझ पर कितनी नमाजें वाजिब। भाई वो कैसे बताए कि मौलाना कभी पढ़ी थी कभी नहीं पढ़ी थी, अब आप बताइए क्या है। वो तो वो, कोई भी आलिम होगा वो कहेगा भाई इसका तायुन आपको खुद करना है, कि मैं कैसे बता सकता हूं। आप चाहे कुछ वक्त लगाएं, घंटा भर लगाएं, 2 दिन लगाएं, 1 हफ्ता सोचने में लगाएं, सारी कैलकुलेशन करके एक नतीजा निकालेगा। इतनी तो कम से कम वाजिब है, ज्यादा से ज्यादा इतनी भी हो सकती है। एक रेंज आपके पास आ गई तो कम पर बिना रखो और कम से कम उतनी अंजाम दे लो। अलबत्ता एहतमाल है कि इससे ज्यादा भी हो, मसलन 3 की हद तक तो यकीनी अदद है, लेकिन मुमकिन है 4 भी हो जाएं। तो इस सूरत में उलमा कहते हैं कि एहतियात मुस्तहब यह है कि जिन नमाजों का एहतमाल है कि शायद ये भी कजा हुई है, तो उनकी भी कजा इंसान उतार दे। एहतमाल की बुनियाद पर भी एहतियात मुस्तहब यह है कि उन नमाजों की कजा करे। तो अब यह है, अच्छा बहुत से लोग होते हैं ना कि उनकी भी कजा कर ले, कि जिनका एहतमाल होता है कि शायद इब्तदाई तौर पर मैं मसाइले दीनिया से इतनी वाकिफ नहीं थी, हो सकता है कि मेरा वजू गलत हो सकता है कि मेरी नमाजों में कोई गलती हो, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कर सकती। इन नमाजों की भी कजा वाजिब नहीं है उस पर, यानी जिसके मुतालिक उसको सिर्फ ये एहतमाल और इम्कान है कि शायद वो बातिल हो, तो उसको ये समझे कि नहीं वो नमाजें सही हैं। लेकिन फिर भी उलामा कहते हैं कि अगर एहतियात मुस्तहब है कि उनकी भी अगर ये कजा कर ले तो भी बेहतर है। यानी जिन नमाज जब उसको पता है कि या तो उनके बातिल होने का एहतमाल हो, या ये कि मसाइले दीनिया से उस जमाने में इतनी वाकफियत नहीं थी, इस वजह से कोई ऐसी गलती और कमी उनके अंदर ना रह गई हो, तो बेहतर है कि उनकी कजा कर लें, लेकिन उनकी कजा करना वाजिब नहीं। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है एक मसला कि अगर फकत 1 रकत नमाज का वक्त रह जाए तो फिर नमाज किस नीयत से पढ़ी जाएगी। ये आम तौर पर नमाज फजर के बाद बहुत होता है, मसलन 1 मिनट मुश्किल से रहता है आपके पास। हमारे पास जो टाइमिंग्स थे मसलन उसमें इतने बजकर इतने मिनट पर कजा होनी है, तो इसमें तो 2 रकत के लिए 2 मिनट लगेंगे मसलन। तो अब किस नीयत से नमाज पढ़ी जाए कि आधी नमाज तो हमारी कजा हो ही जाएगी, यानी कजा के वक्त में चली जाएगी। इसमें उलमा फरमाते हैं अगर फकत 1 रकत नमाज का वक्त रह जाए तब भी नमाज अदा ही की नियत से पढ़ी जाएगी, कजा की नियत से नहीं पढ़ी जाएगी। हां अलबत्ता अगर आपको कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है, हम जल्दी जल्दी से नमाज फजर के बाद वजू करके आए, अच्छी खासी रोशनी खिड़की से नजर आ रही, अब इम्कान है कि शायद हमारी नमाज कजा हो गई है, शायद ना कजा हुई हो। अभी तो ये था कि 1 रकत नमाज आपकी अदा में है और 1 रकत कजा में जा रही है, तो अदा की नियत करो। अब ये कि कुछ पता नहीं है, अब जाएंगे खिड़की खोल के देखेंगे, कुछ अंदाजा उस वक्त हो सकता है, कायम करें ना करें, घड़ी जाकर देखें, इतनी देर में तो अगर मौका होगा भी तो कहीं कजा ना हो जाए। तो अगर ऐसा कभी कोई शुबा आपके पास आ जाए कि आपको ये पता ना चल रहा हो, खासतौर पर नमाज फजर में, वरना आम नमाजों में भी हो सकता है, कि मेरी नमाज कजा हुई या नहीं हुई, तो उस वक्त माफी उस जिम्मा की नियत से नमाज को पढ़ा जाए। माफी जिम्मा, माफी जिम्मा, जो भी मेरी जिम्मेदारी अदा है तो अदा, कजा हो गई तो कजा में चली जाए, बस वो आपकी नमाज इस तरीके से शुमार होगी। लेकिन जहां पर आपको यकीनी तौर पर पता था कि एक रकात मुझे अदा मिल रही है, आधी नमाज कजा में चली जाएगी, वहां पर अदा की नियत करना है। और अगर यह पता ना हो कि मेरी अब इस वक्त नमाज अदा हो रही है या कजा हो रही, तो फिर माफी जिम्मा की नियत से उस नमाज को पढ़ा जाए, जो भी मेरा फरीजा है वो अदा हो जाए, नमाज इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, अब एक मसला पेश आता है कि कजा नमाजें जो हो गई हैं उनको कितनी जल्द पढ़ लेना चाहिए, कितनी जल्द? देखिए, फौरन तो पढ़ना वाजिब नहीं, उस बेहतर यही है, मुस्तहब इसी में है कि जिस दिन की जो नमाज आपकी कजा हो उस दिन जो भी अदा आप नमाज पढ़ने जा रही हैं उससे पहले जो कजा हुई है नमाज उस दिन की, उसकी कजा पढ़ लें पहले, ये मुस्तहब है। अलबत्ता ये वाजिब नहीं, उलमा कहते हैं सिर्फ इतनी ताखिर ना हो कि लोग कहें कि आपको नमाज की कोई परवाह ही नहीं, आपका नमाज का कोई यानी बिल्कुल लापरवाह समझें उसको उन कजा नमाजों से, इतनी ज्यादा ताखिर नहीं होनी चाहिए। मसलन 40 साल गुजर रहे हैं, उसको नमाज कजा हुए, वो सोचता है कि मैं तो मरने से पहले कभी भी जो है पढ़ सकता हूं, तो अपनी नमाजों को टाले चला जा रहा, ये पसंदीदा नहीं है शरीयत में। फौरन तो पढ़ना वाजिब नहीं है कजा का, और बेहतर यह है कि उस दिन की अदा नमाज पढ़ने से पहले उससे पहले की कजा नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए उसको, तो कम से कम इतनी ज्यादा ताखीर के अंदर उन नमाजों को ना डाले कि लोग उसको नमाज से लापरवाही शुमार करें। यह किसके अंदर अहम बात थी। तो अच्छा, ये जो भी मैंने कहा इसमें एक थोड़ा सा एक बता दूं कि हो सकता है कि अभी आइंदा कभी इंसान तकलीद बदलता है, जो मसाइल दिमाग में रहते हैं कुछ मसाइल के अंदर इख्तलाफ होता है। जैसे यही है कि उस दिन की बेहतर और मुस्तहब ये कि उस दिन की जो कजा है वो उस दिन की अदा से पहले पढ़ ली जाए। मसलन अगर किसी शख्स की फजर कजा हुई है तो जोहर असर की नमाज पढ़ने से पहले उस दिन की फजर उतार दे, ये मुस्तहब है। लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं, जैसे अभी मौजूदा हाल जमाने ही में आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का फतवा है कि एहतियात वाजिब यह है कि पहले उस दिन की कजा नमाज ही पढ़ना पड़ेगी। लेकिन एक बस एक मालूमात के लिए, जाहिर इस पर अमल तो आप नहीं करना है, वैसे ही इसमें परमिशन और अपने मर्जी की आपको इजाजत है कि वाजिब नहीं कि उसको पहले पढ़ें। लेकिन आइंदा कभी कोई ऐसा मसला पेश आ जाए, आइंदा किसी ऐसी तकलीद में जाना पड़ जाए जिनका यह नजरिया बने, तो आपके लिए कोई ऐसी हैरानकुन बात ना हो जो कि आपने इससे पहले नहीं सुनी हुई। फतवे इस तरह से होते हैं। तो इतनी ज्यादा ताखिर के अंदर नहीं डालना चाहिए। अच्छा, अब ये चीज रोजे के अंदर भी आती है, बीच बीच में क्योंकि कुछ चीजें मिलती जुलती आ रही होती हैं, तो अगर से हम नमाज कजा को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन रोजा कजा भी बीच में कभी कभी आ जाए। कजा रोजों को कितनी जल्दी रख लेना चाहिए, इसमें भी उलामा कहते हैं कि पिछली रमजान के जो रोजे कजा हुए हैं आपसे वो अगली रमजान से पहले पहले रख लेने चाहिए। अगर आपने रख लिए तो बड़ी अच्छी बात है, वो अदा हो जाएंगे, और अगर नहीं रखे आपने तो कजा तो उनकी फिर भी करना है, उस अगले रमजान का जब गुजर जाएंगे वो रमजान उसमें तो उसी साल के कदर रोजे रखने हैं ना आपने, लेकिन वो जो पिछले कजा हो गए उनको फिर बाद में रखना पड़ेंगे। अलबत्ता इस सूरत में कफारा होता है जिसको कफारा ताखीर कहा जाता है, यानी फी रोजा मसलन आम तौर पर माहाना नजासत की वजह से औरत के मसलन 6 रोजे 7 रोजे या इस तरह से इससे ज्यादा भी अगर बिलफर्ज कजा हुए हैं तो वो अगले रमजान से पहले पहले उनको रख ले। लेकिन अगर उसने नहीं रखे तो वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक कफारे ताखीर उसको देना पड़ेगा, यानी जितने रोजे वो अगले रमजान से पहले नहीं रख सकी, फी रोजा 3 पाव, जिसे एक मुद कहा जाता है, फी रोजा 3 पाव आटा दाल चावल छोले और इस तरह की कोई चीज या गजा, उसको किसी गरीब दीनदार शिया को देना जरूरी है, इसको कफारे ताखीर कहा जाता है। अब उसके अलग मसले हैं, लेकिन बहरहाल दिमाग में रहे कि रमजान के रोजों की भी फौरन कजा नहीं, ताखीर में डाल सकते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अगला रमजान शुरू हो गया तो एक कफारे ताखीर देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कजा नमाजों को कजा रोजों को अगले सालों में भी उतार दें, जितने भी जल्द मुमकिन हो सके उतार देना चाहिए। अच्छा, अब एक मसला वो भी आता है कि मगरिब और इशा कब कजा होती है, तो पिछली दफा खैर आ भी गया था कि हालत इख्तियार में आधी रात से पहले पहले मगरिब और इशा को पढ़ लेना है, लेकिन अगर कोई मजबूरी पेश आ जाए किसी वजह से, जैसे मैंने पिछली दफा मिसाल दी थी, हॉस्पिटल में रहा, मरीज के साथ रहा, ऐसी इमरजेंसी थी कि जिसमें नमाज का वक्त उसका निकल गया और आधी रात गुजर गई, 11:30 12 12:30 बज गए उसको, तो फिर उसको नमाज फजर से पहले पहले उसके कजा पढ़ना, उस नमाज को पढ़ना है। कजा और अदा की नियत नहीं होगी, अदा और कजा की नियत के बगैर नमाज मगरिब व इशा को फजर से पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। तो उस लिहाज से ये मगरिब और इशा कब कजा होती है, तो आधी रात से पहले पहले जो मजबूर नहीं है उसके लिए तो आधी रात से पहले लाजमी पढ़ लेना है, और मजबूर हो जाए तो नमाज फजर से पहले पहले पढ़ लेना है, और बगैर अदा और कजा की नियत के पढ़े। अच्छा, कुछ नमाजें ऐसी हैं कि जिनकी कजा नहीं होती, जैसे हैज व निफास के हालत में जो नमाजें कजा होती हैं उनकी कोई कजा नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अय्याम नजासत में अगर नमाज आयात वाजिब हो जाए तो उसकी भी कजा नहीं, अदा तो खैर पढ़ी नहीं जाएगी, कजा भी नहीं। रोजे अलबत्ता रखे जाते हैं, वो एक अलग मसला है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज अभी रहती है, और वो है इस्तेहाजे वाली औरत क्या कजा नमाज पढ़ सकती है, वो अभी आगे चलकर आने वाला है। इस्तेहाजे वाली औरत को अपनी अदा नमाज तो पढ़ना ही होती, वो तो वाजिब है, क्या इस्तेहाजे वाली औरत अपनी कजा नमाजें पढ़ सकती, ये थोड़ा सा तफसील है जो भी आगे चलकर आएगा। अच्छा, या मसलन इसमें एक और भी शख्स आ सकता है कि जो कि बे अख्तियार तौर पर बेहोश हो गया हो और पूरा नमाज का वक्त इस तरह से निकल जाए, बे अख्तियारी तौर पर बेहोश हो गया है वो। एक होता है कि इख्तियारन बेहोश हुआ, उसने खुद कहा मुझे ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर साहब मुझे बेहोश कीजिए और उसके बाद ऑपरेशन करें, इसको कहा जाएगा इख्तियारी तौर पर बेहोश हुआ ही। तो ऐसे अफराद को अपनी उन नमाजों की कजा करना पड़ती है, क्योंकि उसकी ये बेहोशी उसकी इख्तियारी थी। लेकिन बेख्तियार बेहोश होकर चोट लग गई और पूरे वक्त बेहोश रहा, कोमा में रहा, उन नमाजों की उसको कजा नहीं करना है। अच्छा खैर, फिर उसके बाद एक मसला ये आता है कि क्या कजा नमाजों की अदायगी के अंदर कोई तरतीब जरूरी है, मसला फजर जोहर असर मगरिब इशा, फजर जोहर असर मगरिब इशा, इस तरह से पढ़ते हुए जाएं। तो उलमा ये फरमाते हैं कि कजा नमाजों की अदायगी में तरतीब जरूरी नहीं है, बस उन नमाजों की अदायगी में तरतीब जरूरी है जिससे पहले वो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मसलन असर की नमाज को आप जोहर से पहले नहीं पढ़ सकते, मसलन इशा की नमाज को आप मगरिब से पहले नहीं पढ़ सकती, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि आपने फजर की कजा पढ़ी, उसके बाद मगरिब इशा की कजा पढ़ ली, उसके बाद जोहर असर की कजा पढ़ ली, ये भी कर सकते हैं। यानी उस लिहाज वैसे तरतीब जरूरी नहीं, सिर्फ उन नमाजों में तरतीब जरूरी है जिनमें एक के बाद दूसरी नमाज पढ़ी जाती है, जैसे जोहर के बाद असर पढ़ी जाएगी, मगरिब के बाद इशा पढ़ी जाएगी, लेकिन फजर के बाद आप मगरिब और इशा पहले पढ़ लें और जोहर और असर की नमाज आप बाद में पढ़ें। मसलन आप रात के वक्त अपनी कजा नमाजें पढ़ रही हैं, अब आपको पता है कि इस वक्त तो सब लोग जाग रहे हैं, अभी ऐसा करती हूं जो बुलंद आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजें वो भी पढ़ लेती हूं, फजर मगरिब इशा। मसलन आपको कोई मर्द है, औरत के ऊपर तो खैर वाजिब नहीं है कि वो बुलंद आवाज से नमाजों को पढ़े, लेकिन कोई मर्द मसलन इस तरह से पढ़ना चाह रहा है और उसने सोचा कि जब सब लोग सो जाएंगे कमरे में नमाज पढ़ूंगा तो उस वक्त मैं जो जोहर असर पढ़ लूंगा, क्योंकि वो आहिस्ता आवाज में पढ़ी जाती है, लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, जी हाँ ऐसा कर सकता है। तो कजा नमाजों की अदायगी में तरतीब जरूरी नहीं है, सिवाय कि वो नमाजें जो कि पढ़ी ही एक खास तरतीब से जाती हैं, जैसे जोहर असर और मगरिब इशा, ये मसला हुआ। अच्छा, अब कजा नमाज अगर नमाज का वक्त बहुत तंग है और नमाज कजा होने जा रही है, अब अगर हम मुस्तहबात का ख्याल करेंगे तो हमारी नमाज कजा हो जाएगी। मसलन नमाज फजर पढ़ने जा रही है और एक रकत नमाज, एक मिनट है आपके पास, मुस्तहबात के साथ पढ़ेंगी तो 2 मिनट लगेंगे और अगर मुस्तहबात को निकाल कर पढ़ेंगी तो 1 मिनट लगेगा, तो वाजिब है कि सारे मुस्तहबात निकाल लें, वाजिब। अच्छा, ये नहीं कि इख्तियार, वाजिब हो जाएगा कि मुस्तहबात निकालें, वाजिब हो जाएगा कि अगर वजू करने में इतना टाइम लग रहा है, तयम्मुम उससे कम वक्त के अंदर हो रहा है, तो वाजिब है कि उस वक्त तयम्मुम करें और नमाज को कजा होने से बचाएं और नमाज में सारे मुस्तहबात निकाल दें। عام طور پر خواتین یا مرد حضرات بھی اتنی زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ نہیں, اذان و اقامت سمجھاتے سمجھاتے لوگوں کو اکثر ہم تھک جاتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے, بلکہ واجب ہو جائے گا کہ اب اذان و اقامت کو ترک کریں اگر وقت تنگ ہے. تو اس لحاظ سے ایک مختصر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اچھا, یہ قضا نماز مختصر کا نہیں, یہ ادا اور قضا دونوں کو آپ چاہیں تو مختصر کر کے پڑھ سکتی ہیں. ڈائریکٹ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھا. اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسرا سورہ پڑھ سکیں تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیجیے. اگر وقت بہت تنگ ہے تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیں اور اس کے بعد رکوع میں گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سمے اللہ بھی چھوڑ دیا, اللہ اکبر کہنا بھی چھوڑ دیا, جو اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اس پڑھا جاتا ہے. سجدے میں گئیں, تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا آپ نے, اور یہ کوئی بھی اس طرح کا ذکر, اور اس کے بعد استغفر اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کی تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں, اور دوسرے سجدے کے اندر گئے, پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر صرف آپ نے الحمد کا سورہ پڑھا, وقت نہیں ہے تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیا. قنوت جان بوجھ کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے. مستحبات چھوڑتے ہوئے سارے آپ نے رکوع اور سجدے انجام دیے, اس کے بعد تشہد آپ نے پڑھا اور تشہد کے بعد صرف السلام علیکم کہہ دیا, بس نماز مکمل ہو گئی. اور یہ مختصر طریقے سے نماز پڑھنا واجب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر, اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے. یہ اختیار نہیں ہے, یہ اختیار سلب ہو جائے گا. سارے مستحبات کو نکالیے. تو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے, کون سی چیز مستحب ہے کون سی چیز واجب ہے. تو اس لحاظ سے مختصر ترین طریقہ یہ بنے گا. اچھا, اگر کوئی چار رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں تسبیحات اربع پڑھنی پڑ رہی, تو اس میں اگر آپ ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھ رہی ہیں تو تین کے بجائے ایک ہی دفعہ پڑھیں, اگر تین دفعہ پڑھتی ہیں تو ایک دفعہ پڑھیں, اور ایک دفعہ بھی پڑھنے کا اگر وقت نہیں ہے تو پوری تسبیحات اربع کو چھوڑ کر صرف تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آغا سستانی فرماتے ہیں, ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ بس, اور اس کے بعد یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ایک ایک دفعہ صرف سبحان اللہ کہیں, اور اس کے بعد رکوع سجدہ تشہد سلام. اتنی مختصر سوچیے آپ, لیکن یہ اس وقت ہے, آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کب کتنا وقت باقی ہے, اور اس کے مطابق آپ کو اپنی نماز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ اسی ٹائمنگز کے اندر قضا ہونے سے پہلے پہلے اس نماز کو پورا پڑھ لیا جائے. کون سی چیز چھوڑنی ہے کون سی, یہ اب آپ کو سب بتا دی گئی ہیں, اب یہ ایڈجسٹ آپ کو خود کرنا پڑے گا اس ان ٹائمنگز میں, اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے آپ لے کر آئیے کہ اتنے وقت کے اندر وہ نماز ادا ہو جائے. اچھا, ایک بات اور دماغ میں رہے کہ جو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں نا, ان کی بھی قضا انجام دینا ہوتی. نماز اگر کسی کی باطل ہو گئی ہے, مثلا کسی شخص کو آج پتہ چلا کہ میری پچھلی جو نمازیں پڑھی تھیں وہ سب غلط تھی, اب واجب ہے کہ ان کی قضا کرے. یہ نہیں کہ جو پڑھ لی تھیں غلط ہو گئی تو کوئی بات نہیں, رہ گئی, اب آگے کوشش کرو کہ غلطی نہ ہو. نہیں, ان نمازوں کی قضا کرنی پڑتی, باطل نمازوں کی قضا ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر کوئی شخص سفر میں مثلا جہاز میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے, تو کیا وہ بیٹھے بیٹھے اپنی قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے, اول تو پہلی بات تو یہ کہ اگر جہاز معلوم ہے کہ نماز کا وقت باقی ہوگا اور جہاز لینڈ کر جائے گا تو قضا تو چھوڑی, اپنی ادا نماز بھی جہاز میں نہیں پڑھ سکتے. جہاز لینڈ کر جائے گا اور نیچے, آپ کہیں گے وہاں کہاں, اس کے بعد امیگریشن کی لائن میں لگنا ہے اور پاسپورٹ کنٹرول میں جانا ہے اور وہاں, تو نہیں, آپ کہیں بھی کونے وونے میں ادھر ادھر جگہ نکالیے. مشکل سے واجب نماز دو منٹ کے اندر ہو جاتی ہے, چار رکعت ہی, دو نمازیں بھی اگر آپ کو پڑھنی ہے چار رکعت, آپ کو کہیں کسی بھی جگہ نماز پڑھنے سے اس طرح سے روکا نہیں جائے گا. جہاز لینڈ ہونے کے بعد ہی آپ کو نماز پڑھنا, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں جا کے بہت مصروفیت ہو جاتی ہے تو وہاں میں کہاں نماز پڑھوں گی, تو ابھی جہاز ہی میں پڑھ لوں. نہیں, وہ اگر اس طرح سے آپ نے پڑھی تو نماز باطل ہو جائے گی, اتر کے ہی نماز پڑھ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ نہیں, نماز کا وقت نکل جائے گا جب تک جہاز لینڈ ہوگا ابھی, تو اسی حالت میں پھر آپ کو اپنی ادا نماز پڑھنا ہے, لیکن قضا پڑھنے کی اجازت نہیں. قضا پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ ہلتی ہوئی جگہ, اس میں ادا نماز تو مجبوری کے اندر پڑھ لی جاتی, لیکن قضا نماز وغیرہ کو اس لحاظ سے پڑھنے کی اجازت نہیں. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا معذور شخص دوسروں کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے بیان ہوا کہ اکثر لوگ جو بیچارے معذور ہو گئے ہیں اور کوئی روزگار نہیں ہے, انہوں نے نمازیں اجارہ پڑھنا شروع کر دیں, वो अपनी कजा नमाजें तो पढ़ सकता है क्योंकि वो सेहतियाबी से मायूस है, लेकिन उसमें वो दूसरों की कजा नमाजें तबर्रुआन या इजारे के ऊपर इसको पढ़ने का उसको इख्तियार नहीं। यानी अगर कोई शख्स माजूर है तो वो दूसरों की कजा नमाजें नहीं पढ़ सकता, ना तो इजारे उजरत पे पढ़ सकता है और ना वैसे ही कि चलें अपने वालिद की मैं नमाजें पढ़ लेता हूं। सिर्फ अपनी नमाजें उसको पढ़ने की इजाजत है, वो भी अगर सेहतियाबी से मायूस है। तो ये एक मसला इसके अंदर है। ये तो पूरा अगली दफा का मौजू है। आपने देखा है मैं कहीं भी वाला चीज लेकर ही नहीं आया हूं, बड़े बेटे वाला। ये इतना तफसीली है कि अगला जो लेक्चर आप आज के बाद होगा वो पूरे का पूरा जो है अपने वालदेन की कजा नमाजों के अहकाम के ऊपर है, और इतना इतने ज्यादा अहकाम है कि पूरे 2 घंटे तकरीबन उसमें लगेंगे। तो इस वजह से उसको अभी छोड़ दीजिए। बड़े बेटे को फिर बेटियों वाला मसला है, बहनों वाला मसला है, और बेतहाशा खुद बड़ा बेटा किसी को कहते हैं आधे घंटे का मसला है कम से कम। आप कहेंगे इसमें कौन सा है बड़ा बेटा, बड़ा बेटा होता है नहीं इसमें, आप इतनी तफसील है कि बड़ा बेटा किसको कहते हैं। खैर, क्या औरत को कजा नमाजें पढ़ने के लिए अपने शौहर की इजाजत जरूरी है? देखिए एक मसला, ये मसला असलन आता है रोजे में, और रोजे में आता है सबसे पहले मुस्तहब रोजे में, कि क्या मुस्तहब रोजा औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर रख सकती है? तो उलामा कहते हैं कि इसके लिए उसको शौहर की इजाजत जरूरी है या रजामंदी जरूरी है कि उसके हक के ज़ौजियत के मुनाफी ना हो जाए रोजा रखना मुस्तहबी, तो शौहर से इजाजत ले। अच्छा, क्या कजा रोजा रखने के लिए शौहर की इजाजत चाहिए? कजा रोजा नमाज का भी अभी आता है मसला, कि क्या कजा रोजा शौहर की इजाजत के बगैर रखा जा सकता है या उसकी इजाजत की इसके अंदर उसको जरूरत होती है? तो इसमें रहबर मौजम आयतुल्ला खामनाई का फतवा तो यह है कि वो कहते हैं कि वाजिबात की अदायगी के लिए शौहर की इजाजत लाजिम नहीं, शौहर की इजाजत जरूरी नहीं और शौहर उसे मना नहीं कर सकता, और यही नजरिया मौजूदा मराजे में आयतुल्ला वहीद खुरासानी का भी है। वो कहते हैं कि कजा रोजा अगर रखना है उसको तो इसमें इजाजत वगैरह लेने की उसको जरूरत नहीं। लेकिन आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि ऐसे दिनों में उसको चाहिए कि कजा रोजे रखे कि मजाहिम में हक के ज़ौजियत शोहर ना हो, यानी शोहर के जो हक के ज़ौजियत है उसमें कोई मजाहमत ना हो इस सिलसिले में, या तो पहले से उससे इजाजत ले ले, या ऐसे दिनों का इंतखाब करे कि जिसमें यह मजाहमत हक के ज़ौजियत के एतबार से ना हो। अच्छा, क्योंकि कजा नमाजों का वक्त वसी होता है तो इन बातों का ख्याल रखते हुए मुनाफिए हक के ज़ौजियत शोहर ऐसे औकात का इंतखाब करे कि जिसमें उसके शोहर के हक के मुनाफी ना हो, तो कजा नमाजों के सिलसिले में भी ये वाला इस लिहाज से मसला रहेगा। लेकिन क्योंकि रोजे का वक्त बहुत वसी होता है तो उसमें पहले से शोहर से इजाजत ले ले और इसमें खुद ही जज कर ले वो नमाजों के सिलसिले में कि कोई ऐसा मसला पेश ना आए। तो ये एक फिकही हुक्म इसके अंदर आता है। अच्छा, अब हाँ ये तो अभी आ गया, इससे पहले मसला के सुबह की नमाज पढ़ते हुए अगर मालूम नहीं था कि नमाज कजा हो गई है नहीं तो किस नियत से पढ़ेगा, तो ये अभी आपने सुन लिया कि वो माफी जिम्मा की नियत से पढ़ेगा। अच्छा, नमाज पढ़ते हुए कजा होने का इल्म ना हो कि नमाज फजर, तो वो फिर कि नमाज फजर कजा हुई या नहीं हुई, तो बहरहाल उसकी नमाज वो अदा हो जाएगी, वो जिस तरीके से पढ़ता है वो पढ़ता रहे। अच्छा, अब एक मसला ये भी आता है कि अगर नमाज कजा होने वाली है या कोई मजबूरी है, मसलन नमाज का वक्त तंग है, कोई मजबूरी है या खौफ है। अच्छा, खौफ में उलमा ने लिखा है, मसलन आपने अक्सर ये होता है कि कहीं कोई मसलन बैग उठा के ना ले जाए हमारा, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज खाने में नमाज पढ़ रहे हैं, कि हम इधर सजदे में गए और उधर जो है हमारा बैग गायब हुआ। कोई भी ऐसी वजह हो कि कोई मजबूरी या खौफ हो जिसकी वजह से वो दूसरा सूरा ना पढ़ सकता हो, तो फिर वो जरूरी है उसके लिए कि अलहम के बाद वाला सूरा ना पढ़े। यानी जितनी भी जल्दी इख्तसार के साथ अपनी नमाज को पढ़ सकता हो उसे नमाज को पढ़ के खत्म करे। ये एक इसके अंदर अलग से एक मसला आगा सिस्तानी ने लिखा है, इस वजह से वो आपकी खिदमत में बयान हुआ। अच्छा, अब एक है कि अगर किसी ने गलत करात के साथ नमाज पढ़ी, ये अक्सर होता है, यानी जिसमें उसका अपना कसूर था, किसी से ना उन्होंने सीखा ना किसी से, बस किसी भी तरह से उसका ख्याल किए बगैर और इस तरह से नमाजें पढ़ते चले गए। और बाद में पता चला कि करात की कोई ऐसी गलती थी जिससे नमाज बातिल होती, क्योंकि इसमें भी दो तरह की चीजें, इसमें ज्यादा तफसील हमने उस वक्त बताई है जब नमाजों में करात के अहकाम बयान किए थे, तो वहां उसको ले जाकर सुना जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि इतनी बड़ी गलती थी और जहले कसूर ही था, यानी आपका अपना कसूर था, आपने सही करात क्यों नहीं सीखी और ऐसी गलती की कि अल्फाज बदल गए, माने बदल गए, एक लफ्ज के बजाय कोई दूसरा लफ्ज पढ़ते रहे, तो उन नमाजों की उसको कजा करना है। लेकिन अगर उसने किसी हर्फ को सही समझकर पढ़ा और बाद में पता चला कि गलत था, या किसी से उसने सीखा, उन साहब ने उसको गलत सिखाया और वो इस तरह से नमाजें पढ़ता रहा, तो उन नमाजों की उसको कजा नहीं करना है। यानी हमेशा देखिए एक बात याद रखें कि इसका फायदा जरूर है सीखने का, चाहे आपको कोई गलती क्यों ना सिखा दे। और नमाजों के अंदर ये चीज बहुत चलती कि किसी ने आपको कोई गलत मसला बताया, आपने किसी से जाकर पूछा, उस आलिम ने गलत मसला सहवन बता दिया आपको, उनको नहीं इल्म में था लेकिन फिर भी बता दिया और बाद में पता चला कि उन्होंने गलत बताया था, अक्सर जगहों के ऊपर उसमें छूट मिल जाती। लेकिन अपनी मर्जी से करते चले गए, किसी से ना पूछा ना कुछ सीखने की कोशिश की और गलत सलत पढ़ते गए, उनकी फिर आपको तकरार करनी पड़ सकती है उन नमाजों की, अगर ऐसी कोई गलती जिससे नमाज बातिल होती। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर किसी से सीख लिया जाए या किसी लफ्ज को सही समझकर याद किया है, आपने बाकायदा पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, लफ्ज को सही समझ के याद किया, बाद में पता चला वो जुआद नहीं था बल्कि जे था, जे नहीं था बल्कि जुआद था, इस तरह की कोई चीज है, से सा नहीं था बल्कि सीन था या स्वाद था, तो फिर गलत समझ के उसको सही समझते हुए पढ़ा आपने और गलत हो गया, तो उन नमाजों की कजा नहीं है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से वैसी गलती करते चले गए, ना सीखा ना पढ़ा ना कुछ, और इसमें आपका अपना कसूर था, तो उन नमाजों की कजा करना पड़ती। अच्छा, अब एक मसला आता है आमतौर पर मर्दों के लिहाज से, औरतों को तो यहां इतनी फैसिलिटी नहीं है, नमाज जुमा वगैरह में बहुत कम उनका जाना होता है, कि नमाज जुमा के खुतबा चल रहा है तो लोग उसमें अपनी कजा नमाजें पढ़ने लगते हैं। तो एक बात ये याद रखिए कि आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर खुतबों को सुनना चाहिए, और अगर नमाज पढ़ना खुतबा सुनने के मनाफी हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर जायज नहीं है फिर नमाज पढ़ना, मुस्तहब या कजा नमाजें कोई सी भी। और आयतुल्ला खामनेई तो जाहिर फरमाते हैं कि ऐसे काम अंजाम ना दें जो खुतबा जाया होने का सबब बने, यानी वो एक लिहाज से तो वो मना करते हैं। लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं कि अगर नमाज पढ़ना खुतबा सुनने के मनाफी हो, यानी अगर हम नमाज पढ़ने लगेंगे तो खुतबा हम नहीं सुन सकेंगे, तो फिर इजाजत नहीं। लेकिन क्या अगर इसी के अंदर यह बात है कि अगर कोई इतना माहिर हो, वो कहेगा कि नहीं मैं कजा नमाजें पढ़ रहा हूं लेकिन कान मेरे लगे हुए खुतबे पर और खुतबा में पूरा सुन रहा हूं, तो फिर इजाजत है, वो कजा नमाजें या मुस्तहब नमाजें भी पढ़ सकता है। तो ये एक दिमाग में रहे। अच्छा, बहुत से अरब ममालिक के अंदर रह रहे होते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि भाई वहां तो पूरा खुतबा ही अरबी के अंदर हो रहा है जो हमें समझ में ही नहीं आता। तो अगर वो ऐसी जुबान के अंदर खुतबा हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर खुतबों को सुनना वाजिब नहीं होता है। लेकिन यहां पर तो उर्दू वगैरह के अंदर खुतबे होते हैं, उस लिहाज से उनका सुनना वाजिब हो जाता है। अच्छा, अब एक मसला एक और आता है कि अगर कोई शख्स काफिर से मुसलमान हो जाए तो क्या उसे पिछली उम्र की कजा नमाजें और रोजे अंजाम देने। तो ये सबको पता है कि काफिर को एक बेनिफिट ये मिलता है कि अपनी साबिका जिंदगी की उसे ना नमाजों की कजा करनी है, ना रोजों की कजा करनी है, और ना खुम्स देना है। पिछली जिंदगी में भी तो उसके पास साल भर ऐसे अमवाल पड़े रहे, तो नहीं, उसका उसको खुम्स भी नहीं देना है। लेकिन उसने जो कर्जे लोगों से लिए हैं वो कर्जे अदा करने पड़ेंगे, यानी वो ये नहीं कह सकता कि पिछली तो सब माफ हो गई तो कर्जे भी सब माफ, नहीं, ये नहीं, कर्जे वापस करने पड़ेंगे। हां, अलबत्ता ये वो है जो पहले काफिर था और अब मुसलमान हो गया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मुर्तद हो जाएं, पहले मुसलमान थे फिर मुर्तद हो गए यानी काफिर हो गए, और कुछ अरसे बाद फिर उनको ख्याल आया और दोबारा मुताला किया उन्होंने, या शैतान का बहकावा खत्म हुआ तो वो दोबारा उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उस जमाने इर्तेदाद में जितनी नमाजें और रोजे कजा की उन सब की कजा करनी पड़ेगी। ये एक दिमाग में रहे। इस तरह के भी अफराद कुछ आजकल पैदा हो गए हैं जो इस्लाम से कुफर की तरफ जाती हैं और फिर दोबारा इस्लाम वापस कबूल करते हैं, तो उस जमाने इर्तेदाद जो गुजरा है बीच में पीरियड, उसकी नमाज और रोजे की कजा उनको अंजाम देना है। एक और मसला ये आता है कि अगर कोई गैर शिया मुसलमान शिया हो जाए, मोमिन हो जाए, तो क्या उसको साबिका नमाज रोजों को दोहराना होगा? ये तो मुसलमान ही है ना, लेकिन गैर शिया मुसलमान। अच्छा, अब इसमें दो मसले हैं। एक मसला ये है कि अगर इस शख्स ने जो गैर शिया मुसलमान फिका को जिसको ये फॉलो करता था, अगर उसके मुताबिक उसने अपनी उस पुरानी फिका के तहत सही नमाजें पढ़ी हैं, उन नमाजों की कजा इसको नहीं करनी। अगर तुमने अपनी फिका के तहत, देखिए कितनी ज्यादा इस बात की अहमियत है कि जो भी चाहे वो हमारे लिहाज से हमारी फिका के मुताबिक भी अमल नहीं किया है, वो गलत अमल किया है उसने दूसरी फिका पे अमल करके, लेकिन बहरहाल उसने इल्म हासिल करके उस फिका के मुताबिक नमाजें पढ़ी, यानी ऐसा ना हो कि उस फिका के तहत भी वो नमाज बातिल हो, उसकी कजा करनी पड़ेगी। यानी उस नमाज को बातिल नहीं होना चाहिए, मसलन उस ऐसी गलतियां करता रहा कि वो उनकी अपनी फिका के तहत भी वो नमाज गलत पढ़ी है उसने, उन नमाजों की कजा करना है। लेकिन अगर उसने अपनी फिका के तहत उसने सही नमाजें पिछली पढ़ी थी, उन नमाजों की कजा नहीं। लेकिन अगर इसने गैर शिया जो मुसलमान है अपनी फिका के तहत ये नमाजें पढ़ता ही नहीं था, बेनमाजी था, शिया होने के बाद उन तमाम नमाजों की उसको कजा करना पड़ेगी, कजा करना है, यानी इसको छूट नहीं। अगर ये बेनमाजी था तो उसको छूट नहीं है, काफिर बेनमाजी था तो छूट है, लेकिन मुसलमान बेनमाजी चाहे वो आपकी फिका के तहत नहीं भी था और वो नमाजें पढ़ता रहा और अपनी फिका के तहत पढ़ता रहा जो आपके लिहाज से गलत थी, तब भी उसकी उस नमाजों की कजा नहीं करना है। लेकिन अगर इसने नमाज नहीं पढ़ी या उसकी पुरानी फिका के तहत वो नमाज बातिल थी, उन नमाजों की इसको कजा करना है। अच्छा, अब एक मसला ये है, ये तो अभी आ गया कजा नमाजों को, क्या अदा नमाजों से पहले पढ़ना जरूरी है? तो जवाब है कि जरूरी नहीं है, अलबत्ता आगा नासिर मकारिम का एक फतवा गुजरा। अच्छा, कोई शख्स क्या ऐसा कर सकता है कि इस तरह से पढ़े कि मसलन उसकी 3 साल की नमाजें कजा हैं, तो सोचे कि कौन इस तरतीब को याद रखे, ऐसा करता हूं पहले 3 साल तक की सारी फजर 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 सारी 3 साल की उतार दूं, फिर जोर 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 3 साल की उतार दूं, फिर इसी तरह असर मगरिब इशा ऐसा कर लूं, क्या ऐसा कर सकता है? जवाब है जी हां, ऐसा भी कर सकता है। यानी वो चाहे तो इस तरह से भी कर सकता है कि सारी जिंदगी की फजर एक साथ उतार दे, फिर सारी जिंदगी की जोहर एक साथ उतार दे, फिर असर उतारे, फिर मगरिब उतारे, फिर ईशा उतारे, ऐसा भी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक चीज और भी है, उसे नमाज कजा एहतियाती कहा जाता है, यानी उसको यकीन नहीं है कि मेरी पिछली पढ़ी गई नमाजें बातिल हैं, बस उसे इत्मीनान नहीं है, पता नहीं मैंने मसाइल सही पढ़े थे या नहीं थे, तो उसमें एक ये नियत कर सकता है वो कि मैं ये नमाज कजा एहतियाती पढ़ता हूं और वतन लल कोई भी फजर जोहर असर मगरिब इशा, यानी एहतियातन मैं उनकी कजा दोबारा अंजाम दे रहा हूं, तो एक एहतियात वाली की नीयत उसके अंदर शामिल कर ले और दिल में ये ख्याल करे एहतियातन मैं इस नमाज को पढ़ रहा हूं, वैसे वाजिब नहीं है उसके ऊपर, बस एक एहतियातन पढ़ रहा, हो सकता है ऐसी गलतियां हो गई हो, मैंने उस जमाने में इतने अच्छे मसाइल नहीं याद किए थे, तो मुझे इत्मीनान हो जाए कि इंसान मरते वक्त इत्मीनान हो उसको कि मेरी सारी नमाजें ठीक अदा हुई। अच्छा, अब क्या कोई शख्स हालत सफर में अपनी कजा नमाजें पढ़ सकता है? अभी उस सफर से मुराद वो नहीं कि जहाज या ट्रेन व्रेन में बैठे, वो तो आपको पता चल गया कि वो इस तरह से नहीं पढ़ी जा सकती, मसलन 10 रोज से कहीं कम का मुसाफिर है वो, मसलन हज उमरा और ज्यारात में भी अक्सर लोगों की नमाजें कजा हो जाती, वो तो अभी एक मसला आएगा, लेकिन किसी भी शहर के अंदर 10 रोज से कम का कायम है तो वो मुसाफिर है और वहां पे जाकर उसके पास काफी टाइम है, मुसाफिर वैसे भी आधा नमाज भी उसे 2 रकत पढ़ना पड़ रही, तो उसने कहा क्यों ना मैं अपनी कजा नमाजें पढ़ लूं, तो क्या इजाजत है कि मुसाफिर सफर में अपनी बिल्डिंग में अपने घर में जहां भी उसकी रिहाइश है वहां अपनी कजा नमाजें पढ़े? तो जी हां, इस बात की इजाजत है, लेकिन पढ़ेगा कैसे? सफर में जो कजा नमाजें पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ेगा? तो इसमें देखिए, मुसाफिर सफर में अपनी कजा नमाजें तो पढ़ेगा। अच्छा, सफर और वतन की, देखिए अब जो कजा नमाजें पढ़ी जा रही हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, हो सकता है पिछले सफर की कोई कजा नमाज पढ़ रहे हो आप, या अपने वतन की कोई कजा नमाज पढ़ रहे हो, तो सफर में वतन और सफर दोनों की कजा नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। لیکن اصول یاد رکھیے کہ سفر میں اگر نماز قضا ہوئی ہے کوئی پہلے تو اس کی قضا وطن پہنچ کر بھی قصر ہی پڑی جائے گی، اور وطن میں اگر قضا ہوئی ہے تو اس کی قضا سفر میں بھی پوری ادا کی جائے گی. یعنی معیار اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت وہ نماز قضا ہوئی ہے اس وقت آپ کی ادا والی حالت تھی یا سفر والی حالت تھی آپ کی. یعنی جس وقت نماز قضا ہوئی ہے آپ کی تو اس وقت آپ کو قصر پڑھنی تھی یا آپ کو پوری پڑھنی تھی. جس حالت میں بھی قضا ہوئی ہے بس اس کو اسی طرح سے اس کی قضا بھی انجام دینی. یعنی سفر میں اگر نماز قضا ہوئی ہے تو خواہ آپ سفر میں پڑھیں اس نماز کو چاہے اپنے وطن میں پڑھیں، نماز قصر ہی پڑھنا پڑے گی وہ قضا شدہ. اور اگر وطن میں نماز قضا ہوئی ہے تو خواہ وطن میں اس کی قضا پڑھیں خواہ سفر میں پڑھیں، نماز اس کی 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گی. یہ ایک اس کے ایک اصول ہے، وہ ایک دماغ میں رکھنا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے ایک مسئلہ کہ کیا نماز قضا کے لیے اذان و اقامت کہنا مستحب ہے؟ نماز قضا کے لیے تو زیادہ مشہور نظریہ بھی یہی ہے اور آغا سیستانی بھی یہی کہتے ہیں اور دیگر مراجع بھی کہ نماز قضا کے لیے بھی اذان و اقامت کہنا مستحب ہے. اور نیت کریں کہ کون سی والی نماز کی اذان و اقامت کہہ رہے ہیں، یعنی ادا نماز اگر ہو تو معین کریں کہ میں ادا نماز کی اذان و اقامت کہہ رہا ہوں، اور اگر نماز کوئی قضا ہے تو اس میں معین کریں کہ میں کون سی والی نماز کی، یعنی اگر قضا نماز ہے تو قضا کو معین کریں کہ یہ اس کی اذان و اقامت میں کہہ رہا ہوں. مستحب ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں، نماز واجب ادا کے اندر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اذان و اقامت کو تو قضا میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم کسی اور سے اپنی قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، بہت زیادہ قضا ہیں بھائی ہماری. اب 70 سال کا میں مثلا خود اگر کوئی کہے کہ میں ہو گیا ہوں اور اب میں کہاں اپنی پچھلی جو ہے وہ 55 سال کی جو ہے نمازیں جو ہے لوگ یعنی خود تو پڑھنے کے اب قابل نہیں ہوں تو اپنی زندگی میں کسی کو دے کے پڑھوا لوں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں. اچھا، اسی طرح سے اپنی زندگی میں کسی اور زندہ کی قضا نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے. اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ بہت سے آتی ہیں، بیٹیاں زیادہ عام طور پر یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے والد کی بہت نماز قضا ہیں، ہماری والدہ کی بہت نماز قضا ہیں، کیا ہم ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ زندہ؟ جواب ہے کہ جی نہیں. اگر وہ زندہ ہیں، زندہ ہے کوئی شخص خواہ کتنی ہی بری حالت میں کیوں نہ ہو، وہ بے ہوش ہے مثلا، وہ کوما کی حالت میں ہے مثلا، حتیٰ کہ اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے تب بھی اس کی قضا نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ موت عرفی نہ ہو جائے. موت عرفی کہتے ہیں یعنی جس طرح نارمل طریقے سے سب لوگ جس طرح مر جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سب مشینیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے الگ فقہی احکام ہیں کہ وینٹیلیٹر کو کب ہٹایا جائے گا کب نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب برین ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہٹا دیجئے وینٹیلیٹر. نہیں، برین ڈیتھ کے باوجود بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مر گیا ہے اور اس کی قضا نمازیں ہم پڑھوانا شروع کر دیں یا پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، جب تک کہ موت عرفی نہ ہو جائے. تو یہ بہرحال اپنی زندگی میں کسی بھی زندہ شخص کی نماز قضا نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، اب کیا اپنی زندگی میں قضا روزے کسی سے اجارے پر رکھوا سکتے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو روزے ہی کم سے کم رکھوا لیں؟ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، اس کے لیے مرنا شرط ہے. قضا روزے اپنی زندگی میں نہیں رکھوائے جا سکتے کسی سے بھی. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ چیز ہر ایک چیز یہ تمام پہ احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ نماز روزہ تو نہیں کروا سکتے، لیکن ایک صحتیابی سے مایوس شخص ہے بالکل اور اس پر حج واجب تھا نہیں گیا، تو کیا واجب ہے کہ یہ کسی کو اجیر بنا کر اپنا حج واجب ادا کروائے؟ تو جی ہاں، یہ اکثر شرائط کے تحت یہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ابھی انسان زندہ ہے اور اپنا اس کا حج واجب ہے، تب بھی اپنی زندگی میں اپنی صحتیابی سے مایوس شخص کسی کو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا حج کسی اور سے کروائے اگر وہ مستطیع ہے. یعنی نماز و روزے میں نہیں چلے گا لیکن حج میں چل جائے گا. تو ہاں، البتہ صحتیابی سے مایوس نہیں، اسے پتا ہے ابھی نہیں، لیکن 2-3 سال بعد میری حالت بہتر ہو جائے گی، میں حج دوبارہ کر سکوں گا، تو پھر حج اس پر یعنی واجب نہیں ہوگا. کسی اور کو بھیجے اور بھیج بھی دیا تو ذمہ ادا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ صحتیاب ہوگا تو اس کو خود جانا پڑے گا. اچھا، اب ایک چیز اور بھی چیز آتی ہے کہ رمضان کا بھی جب موقع آئے گا انشاءاللہ کچھ مہینے میں آنے والا ہے، تو جمعۃ الوداع کے روز مساجد کے باہر یا اس میں پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر نماز پڑھ لی جائے تو تمام پچھلی زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، قضاء عمری والی جو ایک نماز ہے. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इस नमाज की सनद पे ही सबसे पहले उलमा के कुछ इश्कालात हैं कि ये नमाज साबित नहीं, ये नमाज बिल्कुल साबित नहीं, इस नमाज की कोई नमाज इस्लाम के अंदर नहीं है कि जिससे तमाम पिछली नमाजें किसी की उतर जाएं। गुनाह का माफ होना एक अलग चीज है जो कि अभी आपने सुना, और कजा का माफ होना एक अलग चीज होता है। जैसे कि अभी आपने इससे पहले सुना कि नहीं, जब तक कजा उतार भी दे तब भी हो सकता है कि गुनाह बाकी रहे। तो बाज औकात गुनाह और कजा की अदायगी अलग अलग चीजें होती हैं। तो कोई नमाज ऐसी नहीं जिसको पढ़ने से सारी जिंदगी कजा नमाजें उतर जाएं। लोग कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पूरी जिंदगी जो है वो इस तरह से हम पूरे साल ऐसे ही गुजार दी और कोई नमाज नहीं पढ़ी, फिर जुम्मतुल विदा के दिन जो है वो एक नमाज पढ़ ली और उसके बाद एक दुआ एक खास होती है वो मांग ली, और बाकायदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूरी वो रिवायत नकल की जाती है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। तो सबसे पहले तो ये कि इस रिवायत की सनद साबित नहीं है, ये उलमा के नजदीक साबित नहीं है, और इस हदीस का जो कि साबित शुदा नहीं है, इस हदीस का टकराव उन तमाम सही अहादीस से होता है कि जिसमें इमामों ने और मासूमीन ने नमाजों की कजा की अदायगी को लाजिम और वाजिब करार दिया। तो अगर ये रिवायत सही भी होती तो उन तमाम सही उस सनद कसीर तादाद की रिवायत से इसका टकराव था, तो ये फिर भी उलमा इसको कबूल ना करते। जब तारुज हो जाता है रिवायात के अंदर तो किसको लिया जाता है, इसके कुछ असूल होते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी रिवायत की अब खुद ही ज़ईफ रिवायात में से, बल्कि कुछ उलमा तो उसको मौजू और झूठी रिवायत भी करार देते हैं। तो इस लिहाज से ये ऐसे पॉम्फलेट लेकर तकसीम करना लोगों में और ईमेल इधर से उधर फॉरवर्ड करना और व्हाट्सएप पर नमाजें चलनी शुरू हो जाएंगी, ये एक दूसरे को फॉरवर्ड करना ही हराम हो जाएगा। और इस किस्म की नमाजें साबित नहीं है और ये मुबतले रोज़ा भी हो सकता है, तो बहरहाल इसमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों के अंदर इंसान उलमा के फतावों से वाकफियत रखे। अच्छा, अभी गुजर गया कोमा और बेहोशी के ज़माने की हालत का मसला, तो अब इतना वक्त नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, एक अलबत्ता ये मौका पेश आता है कभी, अगर कोई शख्स मसलन नजिस हो गया, जुनूब हो गया और नमाज रोज़ा अदा करता रहा और कुछ अरसे बाद उसे मालूम चला कि मुझ पर निजासत की हालत थी, तो उलमा इस सिलसिले में फरमाते हैं कि अगर उस दौरान जो उसने रोजे रखे वो सब रोजे सही शुमार होंगे, अलबत्त उन तमाम नमाजों की उसको कजा करना पड़ेगी। बस एक छोटा सा इसमें एक फिकही मसला है। अच्छा, अब आ जाइए कि क्या इस्तेहाजे वाली औरत अपनी कजा नमाजें पढ़ सकती है, ये मसला है। तो देखिए, हालत हैज में कोई औरत या निफास में अदा और कजा नमाजें नहीं पढ़ सकती, लेकिन इस्तेहाजे वाली औरत को अपनी अदा नमाज तो पढ़ना है, और आगे सिस्तानी और रहबर मौजम के नजदीक इस्तेहाजे की हालत में अपनी कजा नमाजें भी पढ़ सकती है। लेकिन यहां एक मसला मैं और बता दूं दीगर मराजे में से आयतुल्ला वहीद खुरासानी का, कि कभी अगर ऐसा मसला हो कि तकलीदे बदल जाएं तो आपके नजदीक जो है वो ऐसी अचंभे की बात ना रहे। आयतुल्ला वहीद खुरासानी फरमाते हैं ऐसी औरत इस्तेहाजे वाली इंतजार करेगी पाक होने का और उसके बाद अपनी कजा नमाजें पढ़ सकती। तो बहरहाल एक दिमाग में ये चीज रहे कि मसाइल के अंदर जो अगरचे फिलहाल इत्तेफाकी भी नजर आते हैं, तब भी उसके अंदर कोई ना कोई आगे चलकर किसी मसले में किसी मुज्तहिद का इख्तलाफ हो सकता है। तो हालत इस्तेहाजा में मौजूदा दोनों मुज्तहिदीन ये फरमाते हैं कि इसमें अपनी कजा नमाजें पढ़ सकती है, लेकिन आगे वहीद खुरासानी का एक नजरिया इसमें है जो आपके खिदमत में पेश हुआ। अच्छा, अब एक मसला बड़ा दिलचस्प है। देखिए, वो चार मुकामात जहां मुसाफिर को कसर व तमाम का इख्तियार हासिल, मुसाफिर को 10 रोज से कम किसी भी जगह किसी शहर में अगर उसका कयाम है तो उसको नमाजें कसर करना होती हैं, लेकिन चार मुकामात ऐसे हैं कि जहां मुसाफिर को इस बात का इख्तियार है कि चाहे वो नमाज कसर पढ़े और चाहे पूरी पढ़े मुसाफिर होने के बावजूद। अलबत्ता उसमें भी मुस्तहब और ज्यादा फजीलत वाली बात यह है कि वो पूरी पढ़े वहां पर। उसमें एक तो है मक्के में, तो मुसाफिर को चार मुकामात पर इस बात का इख्तियार है कि वो ख्वाह नमाज कसर पढ़े या पूरी पढ़े, उनमें एक तो है मक्के में। अच्छा, मैं इसकी जुजियात में भी नहीं जा रहा, ना ज्यादा इख्तलाफ मराजे में जा रहा हूं, तो बहरहाल लेकिन ज्यादातर मौजूदा मुज्तहिदीन का नजर यह है कि पूरा मक्का इसमें शामिल है, पूरे मक्के में वो नमाज उसको इख्तियार है कि ख्वाह पूरी पढ़े ख्वाह कसर पढ़े, और अगर पूरी पढ़े तो उसका सवाब जो है वो ज्यादा है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है वो है मदीने में। मदीने में, मदीने वाली तस्वीर इसके अंदर नहीं आ सकी है मेरे ख्याल है, मदीने में उसको इख्तियार है। उसके अलावा हायरे हुसैनी, कब्रे इमाम मजलूम से आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि 25 हाथ तक का जो फासला उसके अतराफ में है वहां पर मुसाफिर को इस बात का अख्तियार है। और आगा सिस्तानी ये भी फरमाते हैं कि पूरे कूफा शहर में इस बात का अख्तियार है, पूरे कूफा शहर। अच्छा, जो दीगर उलमा हैं वो कहते हैं कि इख्तियार जो है फकत मस्जिद कूफा की हद तक है और उसके जितनी भी एक्सटेंशंस हैं उसकी हद तक है, लेकिन पूरे कूफा में नहीं। लेकिन आगा सिस्तानी पूरे कूफा में इस बात का अख्तियार देते हैं। इसका मतलब है कि कूफा में मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला दोनों उसमें शामिल हो गई। अच्छा, और इसमें एक बात और भी रहे कि कूफे की हद तक ये वाला अख्तियार है, मस्जिद कूफा मस्जिद सहला, लेकिन नजफ में यह अख्तियार नहीं, हरम में अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो वस्सलाम में। अच्छा, यहां पर अब मसला क्या है, अब कजा नमाजों में ये चीजें कहां से आ गई? बड़ा एक दिलचस्प मसला पैदा होता है यहां। देखिए, यहां पर मुसाफिर को इख्तियार था चाहे पूरी पढ़े चाहे कसर पढ़े, और उसको मसलन पढ़नी थी पूरी, फजीलत भी इसी में है, और वहां पर किसी वजह से नमाज कजा हो गई। अब ये आ गया अपने वतन वापस, तो ये वतन वापस पहुंचकर उस 4 रकती नमाज को कसर पड़ेगा या पूरी पड़ेगा? उलमा फरमाते हैं ये अख्तियार फकत उन जगहों की हद तक था, अपने वतन पहुंच गया तो ये वाला अख्तियार खत्म हो गया, अब इसको कसर ही पढ़ना पड़ेगी। कजा नमाज के अंदर ये एक है कि अगर कभी इस तरह से नमाज कजा हो, ये ना सोचे कि भाई वहां तो मुझे 4 रकत ही पढ़ना थी, तो अब अपने वतन आकर भी मैं 4 रकत ही पढ़ूंगा, क्योंकि हम असूल बयान कर चुके थे कि जिस हालत में भी नमाज कजा हुई उस वक्त क्या जिम्मेदारी ये देखी जाएगी, पूरी पढ़ना जिम्मेदारी बनती थी तो पूरी पढ़ेगा। तो ये सोचकर ये कि अगर कह के मैं पूरी पढ़ूं क्योंकि वहां पे भी मैं 4 रकत ही नमाज को 4 रकत ही पढ़ रहा था, तो ये इख्तियार अपने वतन वापिस आकर या उसकी हदूद से बाहर निकलकर किसी और जगह कजा पढ़ना चाहेगा तो इख्तियार नहीं है। उन 4 जगहों की जो कजा नमाज हुई है उनकी जब कजा उन जगहों से निकलकर पढ़ी जाएगी तो वो कसर ही पढ़ी जाएगी। अच्छा, अब एक मसला यह है कि क्या नवाफिल की भी कजा होती है? नवाफिल की, तो जी हां, नवाफिल की भी कजा है। जैसे कोई शख्स अगर कहे नमाज शब नहीं पढ़ी तो नमाज शब की कजा है, नाफिला जो हर नमाज की पढ़ी जाती है उनकी भी कजा है। अलबत्ता ऐसे नवाफिल की कजा की ताकीद नहीं है जो बीमारी की वजह से ना पढ़े, इंसान बीमार है वो नाफिला कहां पढ़ेगा वो, तो इस ऐसे अशखास के लिए फिर यह है मसला कि जो बीमारी की वजह से सुने नहीं पढ़ी है नमाजें ये नवाफिल वगैरह, उनकी कजा की ताकीद नहीं आई, लेकिन फिर भी चाहे तो कर सकता है। अच्छा, अब एक मसला यहां पर एक चीज आती है कि इस नवाफिल की अगर हम कजा ना कर सकें, नाफिला को पढ़ लेना चाहिए हमें लेकिन हम नहीं पढ़ सके और कजा भी नहीं पढ़ने की हिम्मत नहीं है हमारी, तो फिर मुस्तहब यह है कि इसका सवाब अगर हमें लेना है तो हर 2 रकात के बदले गरीब मोमिन को 1 मुद यानी 3 पाव आटा दाल चावल वगैरह उसको दें, और अगर इस पर भी कादिर ना हो तो दिन की नमाजों के लिए 1 मुद और रात की नमाजों के लिए भी 1 मुद किसी गरीब को दें, यानी 3 3 पाव आटा। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे बनेगी? ये इस तरह से बनेगी कि अगर मसलन हर नमाज 2 रकत ही नमाज के लिए से 1 3 पाव आटा देना है, ये कंपनसेशन यानी समझे पैसे के जरिए आप उस नाफिला नमाजें जो आप नहीं पढ़ पा रही हैं और कजा भी नहीं पढ़ पा रही हैं उसकी इस्लाम ने आपको एक अल्टरनेटिव दिया है अगर आपके पास माली गुंजाइश है कि हर 2 रकात के बदले आप जो है 1 मुद दे दें। तो रोजाना की 17 रकत नमाज वाजिब में 3 3 पाव आटा मिलाएं तो ये तकरीबन 9 मुद बनता है, यानी 7 किलो रोजाना और 202 किलो महाना। अब किसी को हो सकता है ये भी बहुत ज्यादा लगे, ये उस वक्त था कि जब हर 2 रकत के लिए आपको ऐसा करना पड़ रहा था, तो इस्लाम ने कहा अगर ये ज्यादा लग रहे हैं आपको तो आप ये कर सकती हैं पूरे दिन की नमाजों का 3 पाव اور پوری رات کی نمازوں کے نافلہ کا تین پاؤ دے دیں، یعنی یہ کتنا بنے گا، یعنی دن کی نمازوں کا ایک مد اور رات کی نمازوں کا ایک مد، یعنی دو مد روزانہ بنیں گے، یعنی 1.5 کلو روزانہ بنے گا اور 45 کلو ماہانہ بنے گا. 2-2.5 ہزار روپے میں ساری مستحب نافلہ نمازوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا اس پیسے کو خرچ کر کے. تو قضا نمازیں نافلہ کی بھی قضا ہوتی، تو وہ آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی کہ اس طرح سے. اچھا اب کیونکہ مجھے جلدی سے ختم کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا ایک اگلا لیکچر ہے، وہ تھوڑا سا میں نے ان کا لے لیا ہے، کہ تقیہ میں پڑی گئی نمازوں کی کیا قضا ہے. بہت سے افراد جو ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں ان کو تقیہ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا پڑتی ہیں یا بغیر سجدگاہ کے نماز پڑھنا پڑتی. تقیہ میں پڑھی گئی نمازوں کی قضا نہیں، یعنی وہ نماز اسلام صحیح مان لیتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے تقیہ میں روزہ وقت سے پہلے کھولا ہے، اس کا مجتہد اجازت نہیں دیتا تھا کس سے پہلے روزہ کھولا جائے، وقت سے پہلے یعنی جو دیگر مسلمان فقہوں کا جو ٹائم ہے اس موقع پہ اگر اسے تقیہ میں کھولنا پڑ رہا ہے، تو ان تمام روزوں کی اس کو قضا انجام دینا ہے. نمازوں کی قضا نہیں ہے تقیہ کی حالت میں پڑی گئی نمازوں کی، لیکن روزوں کی قضا اس کو انجام دینا ہے. گناہگار بھی نہیں ہوگا کیونکہ تقیہ میں ایسا کیا ہے. پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا قضا روزے کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو قضا روزے کو جان بوجھ کر ظہر سے پہلے پہلے توڑنے کی اجازت ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا. جان بوجھ کر آپ توڑ دیں قضا روزے کو ظہر سے پہلے پہلے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، بس ویسے دل نہیں چاہ رہا، بس آج دل نہیں چاہ رہا کہ روزے کو کنٹینیو کیا جائے، کوئی گناہ نہیں. البتہ وہ جو قضا ظاہر ہے آپ نے توڑا ہے اس کی قضا کسی اور دن آپ کو رکھنی پڑے گی، لیکن گناہ کوئی نہیں. لیکن اگر قضا روزے کو ظہر کے بعد توڑا تو پھر ایک کفارہ آ جائے گا جو روزوں کی تفصیل کے اندر بیان ہوگا. اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ قضا بہتر ہے. بہت سی عبادت میں دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ ہم ادا کے موقع پر تو اس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو قضا بہتر ہے کہ قضا کر کے پڑھیں یا ایڈوانس میں پڑھ لیں یا ایڈوانس میں اس عبادت کو انجام دے لیں. میں مثال دیتا ہوں اس کی. مثلا نماز شب ہے، آگے سیستانی میں تو چلیں یہ فتوی کی سہولت آ گئی کہ آدھا نماز کا وقت ہی بس سمجھیں نماز مغرب ان کے بعد سے پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے دیگر مراجع اور ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد سے اصل وقت شروع ہوتا ہے. تو آدھی رات کے بعد تو ہم اٹھ کر پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم سو جائیں گے. تو اب کیا کریں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایڈوانس میں پڑھ لیں، مثلا ہم سونے سے پہلے پڑھ لیں جبکہ وقت شروع نہیں ہوا نماز شب کا؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں نماز شب میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز شب میں ایڈوانس پڑھنے سے بہتر یہ کہ اس کو قضا کر کے پڑھیں. قضا پڑھ کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت ایڈوانس میں پڑھنے کے. لیکن آگا سیستانی یہ مسئلہ نہیں، اس میں تو ٹائم ہی شروع ہو جاتا ہے. دیگر مہاراجی کی بات کر رہا ہوں جو آدھی رات کے بعد پڑھنے کا اصل وقت قرار دیتے ہیں. تو اگر پڑھ سکتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے، رجا کی نیت سے آپ نماز مغربین کے بعد آپ نے پڑھ لی نماز شب، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو قضا کر کے پڑھیں، ایڈوانس پڑھنے سے بہتر. لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں، مثلا غسل جمعہ، آپ کو پتہ کہ جمعہ کے دن پانی نہیں ہوگا یا ایسی مصروفیت ہوگی کہ مثلا میں جمعہ کا غسل نہیں کر سکتی، تو کیا میں قضا کر کے ہفتے کے دن اس غسل کو کر لوں یا جمعرات کے روز ایڈوانس میں کر لوں؟ یہ نماز شب میں الٹا تھا مسئلہ، قضا کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ تھا، لیکن اس صورت میں اس غسل کو جمعرات کے روز کرنا کا ثواب مل جائے گا آپ کو، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ اس کو ایڈوانس میں کر لیا جائے. تو کبھی کسی عبادت کو اگر وقت میں ٹھیک ادا نہیں ہو رہی، مستحب عبادت، واجب نماز میں نہیں چلے گا کہ ہم ایڈوانس میں نماز پڑھنے ٹائم نہیں ہوا، نہیں یہ نہیں چلے گا. روزہ کسی اور مہینے، ایک نے یہ بھی سوال پوچھا تھا، رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہے، کسی ٹھنڈے سیزن میں موسم میں روزہ رکھ لیں اس کی اجازت نہیں. تو اس لحاظ سے یہ مسئلے اپنی جگہ پر رہے. اچھا ایک چیز اور نہیں بیان کر دوں کہ ہاں، نماز قضا کو باجماعت بھی پڑھنے کی علماء نے اجازت دی. تو بس اب وقت بہت ہو گیا، اگرچہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں اور باقی رہ گئی نہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ بہت ہی اہم اور دلچسپ بھی ہے اور ہر وقت گھروں کے اندر عام پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور وہ ہے والدین کی قضا نماز اور روزوں کا. اس کے اندر کچھ سہولیات بھی علماء نے دی ہیں، بہت اچھی سہولیات ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشست کے اندر ہم عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
صاحب السماء.